أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى درود بھیجی محمد وآل محمد علیہ السلام سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارکباد کہ ماشاءاللہ آج سے آپ لوگوں نے ایک ایسے راستے پر قدم رکھ دیا ہے جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے، ایک ایسے سفر کا آپ نے آغاز کر دیا ہے جس کا انجام فقط اور فقط خیر ہی ہے۔ آج سے پہلے آپ میں یہ خصوصیت نہیں تھی، لیکن طالب علم دینی ہونے کے بعد اب آپ اگر کسی قبرستان کے پاس سے بھی گزریں گی تو 40 روز تک وہاں پر سے مردوں پر سے عذاب کو اٹھا لیا جائے گا، اور کسی نے آپ کو کوئی چیز دی، آپ کی مدد کرنا چاہی کسی رشتہ دار نے، تو راہ خدا میں اس لحاظ سے اب آپ کی جو کمک کرنے کا جو ان کو ثواب ملے گا، پہلے اگر ایک ثواب ان کو ملتا تھا تو اب 10 لاکھ گنا ان کو ثواب ملے گا۔ تو بہرحال اب آپ ماشاءاللہ علم کا ایک سفر شروع کریں گی اور اس طرح کے بلند مقامات جو ہے وہ علم کے حاصل کرتی جائیں گی۔ تو دیکھیے، جتنے بھی بلند مقامات حاصل کیے جاتے ہیں اس میں وہ ایسے اتنے آسانی کے ساتھ حاصل نہیں ہو جاتے، بڑے ہونے میں بڑے دکھ ہیں، ستارے امن میں ہیں گہن چاند و سورج کے لیے۔ ستاروں کو آپ نے بظاہر جو ہمیں عام لوگوں کے اعتبار سے چھوٹے چھوٹے سے نظر آتے ہیں ان کو گہن نہیں لگتا، بڑا ہونے میں چاند اور سورج کو گہن لگتا ہے۔ تو بلند مقامات علم کے حوالے سے یہ کسی چور دروازے سے یا کسی شارٹ کٹ کے ذریعے حاصل نہیں کیے جا سکتے، اس کے لیے وقت لگانا ہی پڑے گا، اس کے لیے آپ کی لگن بہت ضروری ہے اور سخت محنت، یہ آپ کو کسی بھی بلند مقام کے اوپر فائز کرے گی۔ دن کے آرام کو بعض اوقات آپ کو چھوڑنا پڑے گا، راتوں کی نیندیں اپنی حرام کرنا پڑیں گی، جو کہا جاتا ہے نا کہ جو بستر پر خرخر کرتا رہتا ہے، خراٹے لیتا ہے، اصل میں وہ اپنے خر ہونے کا اعلان کرتا ہے، یعنی گدھا، فارسی میں خر گدھے کو کہتے ہیں۔ تو اب اس بلند مقامات علمی کو کیسے حاصل کیا جائے، آج پہلے دن سے یہ بات آپ کو بتا دی جائے تاکہ آپ آئندہ پورا پیٹرن جو ہے علم حاصل کرنے کا وہ اسی طرح سے قرار دے دیں، ان تمام چیزوں جن کا آج کے درس میں آپ کو اشارہ کیا جائے گا۔ تو کہ بہت معمولی حد تک نہ رہ جائیں، دیکھیے وقت گزرتا جائے گا گزرتا جائے گا، یہ آپ کا انتظار نہیں کرے گا، اسی وقت کو آپ کو کیش کرنا ہے، اس سے زیادہ کشید کرنا ہے وقت کو ضائع کیے بغیر۔ آج کیونکہ بالکل پہلی اور ابتدائی کلاس ہے تو بہت سی اہم ترین باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا۔ دیکھیے تقریباً اس سے پہلے بھی جس طرح آج آپ لوگوں کی کلاس کا پہلا دن ہے، آج سے تقریباً 13-14 سال پہلے اور تقریباً ہر سال ایک نیا بیچ ہمارے پاس آتا ہے، تو ہم نے پورا ایک انالیسس کیا ان پچھلے 13-14 سالوں کا اور دیکھا کہ وہ طالبات، بہت سی طالبات ایسی ہیں جو اب تک آ رہی ہیں، چھٹی نہیں ہوئی ان کی، یعنی خود سے خود ہمارے لحاظ سے تو چلے ان کو چلے جانا چاہیے تھا، لیکن کچھ طالبات ابھی تک چلی آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کسی بڑے علمی مقام کو حاصل نہیں کر سکی۔ تو ایسا نہ ہو کہ آج سے 14 سال بعد پھر میری جگہ یہاں پر کوئی اور آدمی بیٹھا ہوا ہو اور وہ اس بات کو بتا رہا ہو کہ وہ پچھلے جو سالوں کی جو غلطیاں طالبات سے ہوئی ہیں ان کو آپ کم سے کم نہ کیجیے گا اور اصلاح کر لیجیے گا اپنی۔ تو بہتر ہے کہ پہلے دن سے ہی اس عبرت کو پکڑ لیا جائے۔ تو بہت بڑی غلطی جو ان سے ہوئی، بہت سی ریگولر بھی آتی رہیں، یہاں پر نوٹس وغیرہ بھی حاصل کرتی گئیں اور نوٹس کی حد تک انہوں نے معلومات اچھی رکھی، مدرسے کے لیکچرز ہوئے اسی کے نوٹس انہوں نے اتار لیے، جو بہت بڑی غلطی ان سے ہوئی वो गलती ये थी कि उन्होंने कुतुबबीनी की तरफ तवज्जो नहीं दी। एक बहुत बड़ा मसला है जिसे आप बहुत आराम से इस वक्त सुन रही हैं, किताबें पढ़ने की तरफ कोई खास तवज्जो नहीं रही। ठीक है, बहुत से मौजूदात पे पूरे पूरे हमारे यहाँ कोशिश ये होती है कि ज़रा तमाम पहलू का इहाता किए हुए दर्स हो जाएं, इसमें तकरीबन सारी बातें आ जाएं, तो उनको एक लिहाज से उस मौजू के मुताबिक अच्छी खासी मालूमात हासिल हो गई, तो उन्होंने सोचा शायद अब किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं रही, नोट से काम चलाती रही। तो नतीजा क्या हुआ कि बहुत सी तालिबात तो ऐसी भी रहीं कि जो छोटे बच्चों के मदरसों में पढ़ाने के भी काबिल नहीं हो सकी 13-14 साल पढ़ने के बाद भी। तो बहरहाल फजूलियात से अपने आप को बचाना है, फजूल गुफ्तगू, फजूल ताल्लुकात, जबकि हम देखते हैं कि जो उलामा जिनकी सीरत आज आपके सामने पेश की जाएगी मॉडल के तौर पर, तो इल्म की गुफ्तगू हो रही होगी तो उलामा को तो मॉडल बनाया जाएगा ना, खिलाड़ियों को या गुलकारों को तो मॉडल नहीं बनाया जाएगा उसमें। तो उलामा जो बड़े इल्मी मकाम को हासिल कर गए हैं उनके मुतालिक ये बात कही जाती है कि वो अपने ज़ौक़े मुतालिया और क़ुव्वते मुतालिया के ज़रिए ही आसमान इल्म तक पहुँचे। आयतुल्ला मरशी नजफ़ी की तस्वीर है आपके सामने। सो आलिम का काम ही किताबों के साथ, उसका उठना बैठना सोना जागना किताबों के साथ होता है, यही अपने उलूम को अपने अंदर मुंतकिल करता है और आसमान इल्म तक पहुंचता है, और उसके बाद उससे करामतों का जहूर भी होता है, वो अपनी अखलाकियात को भी कैसा अच्छा दुरुस्त कर लेता है। तो आयतुल्ला मरशी नजफ़ी और दीगर उलमा, इमाम खुमैनी, किसी भी आप अपने मुज्तहिद या मर्जे की तस्वीर अगर आप देखें तो वो सिर्फ, और कोई तायुशात ज़िंदगी उसके पास आपको अतराफ़ में नज़र नहीं आएंगी, सिर्फ किताबें रखी नज़र आएंगी। और यही वजह है कि आज कैसे दिलों पर इनकी हुक्मरानी है, मरने के बाद भी ये लोग मरे नहीं हैं, उसी तरह से ज़िंदा नज़र आती। इसी तरीके से मरहूम आयतुल्ला खोई, किताबों का साथ, क़ुव्वत मुतालिया, ज़ौक मुतालिया, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर क़ुव्वत इल्मी पैदा होगी, उतना ज़्यादा माशरे के लिए कारामत बनेंगी और एक नूरानियत खुद आपके अपने अंदर आती जाएगी। आयतुल्ला सिस्तानी, हर वक्त, यानी उन अफराद में से हैं जिनके मुतालिक बहुत ये बात मशहूर है कि हर वक्त जब भी कभी इनको देखते हैं बगैर किताब के कभी नज़र नहीं आते, हालांकि मर्जे हैं अपने ज़माने के, दीगर मराजे भी हैं, लेकिन क्या है कि हर वक्त किताब हाथ में। तो कोशिश ये करें कि आपको भी ये सब चीज़ें दिखाने का एक मकसद ये है कि इसके बगैर कोई शॉर्टकट और ऐसा तरीका नहीं है कि जिससे आप कोई बुलंद इल्मी मुकाम को हासिल करें, जब तक कि अपने मुताले को आप ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करेंगे। कितने हमारे उलमा ऐसे गुजरे हैं जो बाकायदा दुआ करते थे कि परवरदिगार अगर मुझे मौत आए तो मेरी लाइब्रेरी में आए, मरूं तो लाइब्रेरी में मरूं, किताबों के दरमियान में मरूं। यही वजह है कि जिनका अभी थोड़ी देर पहले तस्करा हुआ था, आयतुल्ला मरशी नजफी। आयतुल्ला मरशी नजफी, इन्होंने भी बाकायदा यही वसीयत की थी, और ये वो अजीम शख्सियत है कि जो इनका वसीयतनामा भी छपा है उसके अंदर भी उन्होंने ये बात कही है कि इतनी अजीम शख्सियत के बाकायदा ख्वाब में नहीं, जागती आंखों से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई है और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। और मासूम कुम सलामुल्लाह अलैहा से मुलाकातें हुई, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। और खुद फरमाते हैं कि मासूम कुम से, क्योंकि वो रिश्ते में मेरी फूफी भी होती हैं, यानी ऊपर अगर सिलसिला चले, इल्मुल अंसाब के बहुत ज़्यादा माहिर थे आयतुल्ला मरशी नजफ़ी, के रिश्ते मेरी फूफी भी होती हैं और इस तरह से मुलाकातें हुई हैं कि मैं उनके जिस्मानी खद्दो खाल से भी वाकिफ़ हूँ, यानी चाल से वाकिफ़ हूँ उनकी, किस तरह से वो चलती हुई आती थी और मुझसे मुलाकात करती थी। तो बहरहाल इनके आगे की जो क्लासेज होंगी इसमें इनका मुकाम और मरतबा जो है वो बताया जाएगा। तो आयतुल्ला मरशी नजफ़ी, इनकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी जो इन्होंने कौम में कायम की, अगर आपको ज़्यारत हज़रत मासूम कुम सलामुल्लाह अलैहा नसीब हुई हो, और नहीं हुई तो इंशाल्लाह ज़रूर जल्द होगी, तो वहाँ पर भी मासूम कौम के हरम के बिल्कुल सामने इनकी लाइब्रेरी, किताब खाना है आयतुल्ला मरशी नजफ़ी, जो एशिया की बड़ी तरीन लाइब्रेरीज में से शुमार होती। और इन्होंने अपनी वसीयत की थी कि मुझे मरने के बाद, ये उनके आयतुल्ला मरशी नजफ़ी जिस वक्त कब्र में लिटाया गया था उस वक्त की तस्वीर, कि मरने के बाद मुझे कहाँ दफन किया जाए, मेरी लाइब्रेरी में उस मुकाम पर सदर दरवाजे के पास कि जहाँ से सारे तालिबे इल्म गुजरते हैं और उनके कदमों की खाक उड़ उड़ के मेरी कब्र के ऊपर गिरे। इतना अजीम मुकाम का हामिल आलिम दीन, और वो इस तरह की वसीयत करके गया। तो ये उनकी लाइब्रेरी, ऐसी अजीम शान लाइब्रेरी कायम करके गए, और उन मुज्तहिदीन में से थे कि जो इतने पैसे के एतबार से, यानी ज़ात के ऊपर खर्च नहीं करते थे, ज़ाती हैसियत में इतने गरीब थे कि पूरी ज़िंदगी में एक दफ़ा भी हज ना कर सके थे, क्योंकि हज के जितने पैसे होते हैं इतने सारी ज़िंदगी में आयतुल्ला मरशी के पास कभी पैसे नहीं जमा हो पाए। लेकिन बहरहाल इतनी बड़ी लाइब्रेरी जो है वो इस लिहाज से कायम करके गए। और अभी भी पाकिस्तानी ज़ायरीन जो वहाँ जाते हैं और ख़वातीन जो पाकिस्तान की होती हैं वो भी इस लाइब्रेरी को जाकर विज़िट करती हैं और देखती हैं कि क्या अजीम लाइब्रेरी जो है बना कर गए। लाइब्रेरी का लाइब्रेरी कोई किताबों का कब्रिस्तान नहीं होती, बल्कि इस्तेफादे के लिए होती है, इल्म हासिल करने के लिहाज से होती है। इतनी बड़ी लाइब्रेरी अपने पास रखना हर शख्स के बस की बात नहीं होती, तो इन किताब खानों से ताकि इस्तेफादा किया जा सके। तो इस तरह से आयतुल्ला मरशी नजफी हर वक्त किताबों के झुरमट में रहा करते थे, हर वक्त किताबों के साथ रहा करते थे, और यही वजह है कि उनके मरने के बाद जो उनका वसीयतनामा भी जो छपा है, जो वसीयतनामा छपा है उनका, जो उनके बेटे आयतुल्ला महमूद मरशी ने छापा है, उसके अंदर ये सारी तफसीलात जो है वो बयान की हैं। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि अब आपको इस सिलसिले में क्यों सिर्फ आपको कोई ज़ेब दास्तां के लिए चीज़ें नहीं बताई गई, बल्कि इसके पैगाम आपको देना है कि हर शख्स के घर में कम से कम एक छोटी सी लाइब्रेरी ज़रूर हो, हर तालिबे इल्म के पास एक छोटी सी एक लाइब्रेरी, जो इब्तदान अभी हो सकता है आपके पास ये सब चीज़ें ना हों। और एक और बात जो हम हर दफ़ा तमाम ख़वातीन से भी जो भी यहाँ दाखिला लेती हैं उनसे कहते हैं कि देखिए घर वालों को, जो भी आपके घर में अफराद होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शेयर नहीं की जाती, ज़ाती होती हैं। टूथब्रश हर शख्स के पास अपना अलग होता है, तौलिया अक्सर अफराद जो है अपना अलग रखते हैं, रूमाल है, चप्पल है, जूते हैं या मोज़े वगैरह हर शख्स के अलग होते हैं। मिसाल तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बहरहाल बात को समझाने के लिए, यही वजह है कि उलमा कहते हैं कि हर शख्स का अगर घर में 10 अफराद भी रहते हैं तो 10 का 10 का कुरान अलग होना चाहिए, हर शख्स के पास एक अलग कुरान हो। ये नहीं कि बस एक ही कुरान है, बस वही चला आ रहा है दादा हुजूर के ज़माने से, और अब तक जो है वो कभी कभार ही तो उसको सीढ़ी लगा के उतारा जाता है, गर्द वर्द साफ की जाती है, फिर उसके नीचे से या तो मुसाफिर को गुजारा जाता है या फिर दुल्हन को रुख्सत किया जाता है, इसके अलावा कोई कुरान का और कोई काम नहीं। माज़ल्ला, कुरान हर शख्स के पास अलग होना चाहिए, जब चाहे एक हैंडी कुरान की जब चाहे तिलावत करे, जब चाहे कोई निशान उसके अंदर लगा ले, जब चाहे कोई चीज़ को मार्क करनी है, हर शख्स का अपना। इसी तरीके से तौज़ील मसाइल भी घर में एक नहीं होनी चाहिए, जितने अफराद हैं उनकी अलग तौज़ील होनी चाहिए, कुछ लिखना है, कोई चीज़ नोट्स बनाने हैं, कोई चीज़ करनी है, हर शख्स के पास अपनी एक तौज़ील मसाइल होनी चाहिए। इसी तरीके से हर शख्स के पास अपनी मफातीउल जिनान एक अलग होनी चाहिए, ये नहीं कि बस एक मफाती है, बारी बारी कभी मौका पेश आ जाए तो ज़्यारत पढ़ने के लिए हर शख्स बार बार अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है, नहीं, हर शख्स के पास अलग होनी चाहिए। जब टूथब्रश अलग हो सकता है, तौलिया अलग हो सकता है, तो ये जो काम की हर वक्त की चीज़ें, ये क्यों नहीं अलग हो सकती। इसी तरीके से सहीफ़ कामिला है या सहीफ़ सज्जादिया है, इसकी दुआएं ऐसी हैं जो रोज़ पढ़ने वाली हैं, ये हर शख्स के पास अलग एक किताब होनी चाहिए। अपने लिहाज से कुछ अपने अपने पेज कोई ऐसा वो मार्क किया हुआ है उसके अंदर कोई ऐसी चीज़, कोई किसी चीज़ का तर्जुमा समझ में नहीं आया, जो रोज़ाना के पढ़ने की हर शख्स की प्रायोरिटीज़ अलग अलग दुआओं के लिहाज से होती हैं, उसने अलग तरह तरह की मार्किंग की हुई। घर में अगर सिर्फ एक किताब रहेगी, अब तो बल्कि अगर निश्तर पार्क में अगर बाकायदा कोई खतीब ऐलान करे कि हाथ उठाइए किस किस के घर में सहीफ़ कामिला है, तो मुश्किल से शायद 3-4% से ज़्यादा लोग हाथ उठा सकें। ये कितनी बड़ी बदनसीबी है। तो बहरहाल ये हर शख्स के पास होनी चाहिए अलग। और अब तो ईरान में भी होता है, और आप जिस लिहाज से जो सेल फोन्स आ गए हैं, इसके अंदर भी तमाम मफाती, तमाम कुरान, तमाम सहीफ़ कामिला और तौज़ील मसाइल हर कुछ मुमकिन है कि आप अपने पास हर वक्त हैंडी के तौर पर भी रख सकें। कहीं पे भी आप वेटिंग लाउंज में कभी इंतज़ार कर रही होती हैं, कभी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रही होती हैं, कभी आप अपनी गाड़ी में बैठ के या बस में या किसी जगह जा रही होती हैं, तो इतना पीरियड और टाइम भी ऐसा फालतू क्यों गुजारें? आपके पास ये सब चीज़ें हों, इन तमाम चीज़ों का इस्लामी लिहाज से इस्तेफादा करें, उसके अंदर ये चीज़ें डलवाएं। तो बहरहाल एक बात ये हुई इसके अंदर कि सब चीज़ें होनी चाहिए, और एक चाहे लाइब्रेरी हो चाहे ख्वाक एक या दो शेल्फ पर मुश्तमिल ही क्यों ना हो, इससे आपको आगाज कर देना। तो बहरहाल बहुत से देखिए वहां तो वेस्टर्न कंट्रीज में तो बाकायदा इस तरह से ऐसी कुर्सियां तक और सोफे तक ईजाद किए गए हैं। अलबत्त ये तो जरा इसमें तौहीन का पहलू आ जाएगा कि नीचे कोई किताब जो है वो ना हो, लेकिन ये कि बहरहाल वो चाहते हैं कि बस जिस जगह बैठे हाथ में उसी वक्त कोई भी वक्त जाया ना किया जाए और हाथ में कोई किताब उनकी आ जाए। तो अब ये बात बयान करने का मकसद था कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अभी से बता दी गई हैं ताकि बाद में कभी आपको एहसास होगा कि ये बहुत बड़ी गलती हमसे हो गई कि हमने अपने आप को किताबें पढ़ने का आदी नहीं बनाया और इतने साल साल गुजरते चले गए और हम कोई ख़ास मुकाम हासिल नहीं कर सके। देखिए कोई शख्स भी मेडिकल कॉलेज में जाता है तो 5-6 साल में डॉक्टर बन के बिलाखिर निकल ही जाता है, माशरे में काम करता है, अस्पतालों में काम करता है, इलाज करने के काबिल हो जाता है, बहुत बड़े पैमाने पे ना सही लेकिन लोगों का इलाज कर सकता है, स्पेशलिस्ट लेवल पे ना सही उसमें भी 1-2 साल और लगते हैं तो चंद साल में स्पेशलिस्ट भी बन जाता है। लेकिन क्या ऐसा मसला इसके अंदर हो गया कि 14-14, 15-15, 20-20 साल से लोग पढ़ रहे हैं और वो माशरे के लिए कोई कारामद ना बन सके? दीन के एतबार से दीन में खुदा ना खास्ता कोई नक्स नहीं है, बल्कि ये नक्स जो है और खराबी जो और कमी जो है ये खुद तालिबे इल्म के अंदर पाई जाती कि वो बहुत सारी चीज़ों की तरफ मुतवज्जे नहीं। तो अगर आप किताबें पढ़ने की आदी हो गई तो आज से फकत सिर्फ चंद साल लगेंगे, 2-3-4 साल के अंदर आप छोटे दीनी मदारिस के अंदर बच्चों को के लिहाज से आप खिदमात अंजाम दे सकती हैं, दीन में अपना हिस्सा डाल सकती हैं। मजीद चंद साल और लगाएंगी तो बड़े मदारिस के अंदर भी आप जा सकती हैं पढ़ाने के लिए। खुद जैसे कि हमारे सरपरस्ते आला मौलाना गुलाम अली वजीरी साहब क़िबला, वो ज़्यादा अरसे नजफ में नहीं रहे, शायद बमुश्किल 4-5 साल और दीनी मदारिस में रहे लेकिन नजफ में सिर्फ 4 साल शायद गुजारे। लेकिन क्या है कि भरपूर तरीके से मौलाना कभी आपकी भी क्लासेस लेंगे तो अपनी कभी वो एक्सपीरियंसेस आपको बताएंगे तो आप हैरान होंगी कि किस तरह से उन 4 सालों को उन्होंने कशीद किया और एक एक लम्हे से फ़ायदा उठाया। कि बाज़ औक़ात बहुत से उलमा हैरान भी होते हैं कि मौलाना की अरबी इस तरह की है कि जनाब उस साइकिल के अंदर जहाँ हवा भरी जाती है उसके अंदर जो वो स्क्रू टाइप की चीज़ लगती है उसको भी अरबी में क्या कहते हैं ये भी उनको पता है। तो कहते थे मैं इसी तरह से बोलनी नहीं भी आती थी तो मैं जाके अरबों से बोलता था, वो मेरे अरबी बोलने पर हंसते थे लेकिन मैं शर्माता नहीं था और बिलाखिर इसी तरीके से अरबी सीख ली कि आज जन्नतुल बकी में कभी जाकर वहाँ गुफ्तगू करते हैं लोगों से अरबों से तो मानने को तैयार नहीं होते कि आप अरब नहीं। तो उस टाइम और वक्त का सही तौर पर अगर यूटिलाइजेशन कर लिया जाए। तो इस सिलसिले में एक और बात की अहमियत यूं भी है कि माशरे में देखिए जब तक आप राइज नहीं करेंगे इस चीज़ को, आप किताबों के तोहफे लोगों को दें, खुद भी किताबों के तोहफे कबूल करें। मसलन आपको पता है आपकी कोई पोजीशन आई है, आप रिश्तेदार खवातीन आएंगी आपको कोई कपड़े लेकर आएंगी, पर्स लेकर आएंगी, फल आप कहेंगे भाई कुछ देनी है तो किताबें दे दें मुझे तोहफे, फ्रेंकली भी बाज़ोकात कह दें। किसी के घर जाएं आप, रिश्तेदार हो कुछ हो, आप जाके पूछें आपके घर में किताबें क्यों नहीं नजर आ रही, और ज़रा सा भी अगर कोई करीबी दोस्त है आपका आप उससे भी पूछ सकती हैं कि आपकी आजकल आप कौन सी किताबें ज़ेरे मुताले हैं, आपकी कोई नई किताब आपने आप कौन सी खरीदी है इस महीने। और ज़्यादा बेतकल्लुफ़ है तो आप ये भी कह सकती हैं कि आपको डॉक्टर ने किताबों से परहेज़ बताया, ये भी आप लोगों से कह सकती हैं। पैसों के जो पैसे हैं वो कपड़ों के ऊपर जो है वो कितने ज़्यादा खर्च किए जाते हैं, लेकिन किताबें खरीदने पर हम देखते हैं कि बस एक कोई किताब ले आए तो पूरा घर बस वही पढ़ेगा, कोई भी अपनी जैसे तौज़ुल मसाइल या कुरान या सहीफ़े कामला तक अलग नहीं खरीदेगा, यानी सारी किफ़ायत शारी सिलसिले में होगी। तो बहरहाल ये बात भी कही जाती है कि जो भी किताबों पे जिनका बुक बैलेंस ज़्यादा होता है उनका बैंक बैलेंस कम होता है, एक मुहावरे के तौर पर भी ये बात मशहूर है। और उलमा ये भी कहते हैं कि किताबों का हमेशा करंट अकाउंट खोलना चाहिए, सेविंग अकाउंट नहीं खोलना चाहिए। सिर्फ ये ना हो कि किताबें इकट्ठी करती चली जाएं, ये भी एक बीमारी लग जाती है लोगों, बस ये किताबें डंप होती चली जा रही हैं, शेल्फ के अंदर भरती चली जा रही हैं, एक लाइब्रेरी के अंदर तब्दील हो रहा है कमरा, लेकिन क्या है कि उसको पढ़ वैसा नहीं रहे, दीमक लग जाएगी उन किताबों में, उनका कोई फ़ायदा नहीं। बाकायदा ऐसे उलमा हमारे गुजरे हैं, एक आलिम गुजरे शेख अबू अली बगदाद में, उनका तस्करा मैं किसी किताब के अंदर पढ़ रहा था, एक दफ़ा उनका संदूक किताबों का जल गया था, इतना गमगीन हुए शिद्दत गम से कई दिनों तक ऐसे निढाल रहे कि बगदाद में दीगर उलमा और तालिबे इल्म उनसे कितने ही दिन तक ताजियत के लिए आते रहे, किताबों की ताजियत, जो किताबें जल गई थी उनको तसल्ली देने के लिए, उनके एक लिहाज से जैसे ताजियत कहा जाए उसको, उसके लिए उनके पास आते रहे। और आज हम देखते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर किसी शख्स का इंतकाल हो जाता है तो घर में से कबाड़ समझ के जो सबसे पहली चीज फेंकी जाती है वो किताबें, मदरसे में लाकर लोग फेंक के जाते हैं यहाँ पर कि देखिए फिर हम देखते हैं उसमें कौन सी कारामत किताबें हैं जो हमारे पास नहीं होती हैं, खुद रख लेते हैं और किसी और आलिम के पास, वरना जो ज़रूरत से ज़ायद होती है तो वहाँ पर दे दी जाती। यानी किताबों को कबाड़ समझ के, जबकि रिवायात में अभी सरवसी इमाम उसके बाद अगली क्लास लेंगे तो आपको वो तफसील से बताएंगे कि इसकी कितनी अहमियत है कि अपने पीछे किताबें छोड़कर जाने की, ताकि लोग उनसे बाद में भी इस्तेफादा करें। इतनी मुश्किल से लाइब्रेरीज बनती हैं, इतनी मुश्किल से किताबों का कलेक्शन जमा होता है, लेकिन सोचते हैं कि शायद सबसे फजूल चीज़ ये किताबें हैं जो मरने के फौरन बाद निकाल के फेंकी जाती हैं। तो देखिए इस जमाने में और उस जमाने में क्या फर्क रहा। उंदलुस को जब बर्बाद किया गया था तो 10 लाख किताबें गरनाता के आवाम के घरों से निकाली गई थीं और मुसलसल 10 रोज तक जलाई गई थीं। 10 रोज तक किताबें, 10 लाख किताबें गरनाता में इस तरह से जलाई गई। हमारे जितने बूढ़े अफराद हैं, बजाय इसके कि शुरू से, क्योंकि उनको इसमें कोई रगबत नहीं होती, किताबें उस वक्त भी नहीं पढ़ते तो बुढ़ापे में अब आके क्या पढ़ेंगे, तो रिटायरमेंट के बाद आमतौर पर जो बूढ़े अफराद हैं वो बस जनाब इसी तरीके से या तो टीवी देख लिया है, किसी जगह लोट लगा ली उन्होंने, या मसला नहीं है कि जो है वो अखबार वगैरह पढ़ लिया, बस उसके उसके अंदर रहते हैं। जबकि पहले ज़माने के बुजुर्ग इतना मुतवज्जे थे कि बाकायदा सन 1844 में एक रिपोर्ट लंदन भेजी गई थी, इंडिया में, हिंदुस्तान से लंदन भेजी गई थी रिपोर्ट कि यहाँ पर एक आम मुसलमान भी इतना ज़्यादा इल्म का शौक रखता है और कुतुबबीनी इतनी ज़्यादा करता है कि मामूली सा अगर कोई चपरासी भी है तो वो भी अपने बच्चे के लिए कोई ना कोई ट्यूशन, कोई मुंशी या मौलवी ज़रूर रखता है जो बच्चों को तालीम दे। और इतने ज़्यादा उस ज़माने के मुसलमान पढ़े लिखे थे, क्योंकि मुसलसल कुतुबबीनी और मेयार इतना ज़्यादा उनका था कि रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया था कि यहाँ के मुसलमान इंडिया के इतने ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं और फलसफे और मंतिक में भी इतने माहिर हैं कि इंग्लैंड का एक ग्रेजुएट भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। ये बाकायदा उस रिपोर्ट में कहा गया। तो उन्होंने इस बात से इबरत पकड़ी और मुसलसल अपनी तालीम को बढ़ाते चले गए, यहाँ तक कि उस ज़माने से ये चीज़ थी कि मोबाइल लाइब्रेरीज उन्होंने इंग्लैंड के अंदर कायम की और उसके बाद ये सिलसिला अभी तक जारी। ये तो बहुत पुरानी की एक लिहाज से मोबाइल लाइब्रेरियाँ हैं बाकायदा, कि किसी भी जगह जाके रुकती हैं, जो पढ़ने के शौकीन अंदर जाएं, बैठें, पढ़ें, किताबें भी अंदर मौजूद हैं या अपने नोट्स ले जाएं पढ़ें, उसके बाद फिर ये मुख्तलिफ जगहों पे ये मोबाइल लाइब्रेरीज का कायम। तो आप देखें कि ये उन्होंने इतना ज़्यादा इन तमाम चीज़ों से इस्तेफादा किया, आप लोगों से इबरत पकड़ी, उसकी रिपोर्टें बनाई और कहाँ से कहाँ पहुँच गए और आपको किस मुकाम के ऊपर लेकर आ गए कि घर में कोई किताब मौजूद हो तो सबसे पहले मरने के बाद उसको निकाल के फेंका जाए। तो जब भी यही वजह है कि बाज़ दानिश्वर हजरात भी ये बात कहते हैं कि अगर कोई शख्स फजूल मुताले का भी आदी है ना, वो उससे जरूर बेहतर है जो बिल्कुल मुताला ना करता। बहरहाल ये तो नहीं बात कही जाएगी इस्लामी लिहाज से कि चाहे वो हराम चीजों का मुताला करे, नहीं, वो बात एक अलग, लेकिन फजूल मुताला, ऐसी बस डाइजेस्ट पढ़ रहे हैं, कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, कोई तीन औरतें तीन कहानियां पढ़ रहे हैं जो मर्द हजरात सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, इस तरह की चीजें जो है इसमें अपना वक्त को लगा रहे हैं, तो बहरहाल लेकिन ये फिर भी उन अफराद से जरूर बेहतर हैं कि जो बिल्कुल भी मुताला करने के आदी नहीं, जो पढ़ने के आदी नहीं। यही वजह है कि देखिए आज का जो खास बात है जिससे इल्मी मुकाम हासिल होता है, उसमें अगर एक पॉइंट भी ये वाला आप पकड़ लें ना, वो है कि अगर आप असबाब और जराए इल्म जो है उनका एहतराम शुरू कर दें तो आप हैरान हो जाएंगे कुछ ही दिनों के अंदर कैसी तब्दीली रूनमा होगी आपके अपने अंदर से। उलमा बहुत से ऐसे गुजरे जो बाकायदा अपनी किताबों को खुशबू की धुनी दिया करते थे, बाकायदा उनमें से जब किताब खोलें तो उसमें से खुशबू आए। तो बहुत से उलमा ऐसे भी गुजरे जो कि जाहिर है कि हमसे ये तकाजा भी नहीं है इस्लाम का, लेकिन इतना ज़्यादा कमिटेड थे कि हमें इल्म हासिल करना है और दीन खुदा के लिए काम करना है कि बहुत से उलमा ने तो शादियां तक ना की। तो उनसे पूछते थे लोग, क्या आपको औलाद की हाजत नहीं है, क्या आप नहीं चाहते? तो कहते इतनी किताबों की मौजूदगी में मुझे औलाद के पैदा होने का कोई गम नहीं। कोई अगर, यानी उनके एतबार से मैं बात बता रहा हूं कि सिर्फ एक शौक और रगबत दिलाने के लिए, जैसे किताब पे गर्द जम जाती है, लोग जोर से हाथ मार के किताब पे से गर्द झाड़ते हैं। कालीम के सामने एक दफा किसी ने ऐसी गर्द झाड़ दी थी, तो उन्होंने कहा खबरदार ऐसा आइंदा मत करना, ये गोया हाथ मेरे दिल के ऊपर आकर लगे, साफ करना था तो आराम से किसी कपड़े से साफ करते। यानी किताबें हैं, इनको आप ऐसा ना कि अभी मैं आके आपके सामने बहुत सी चीजें पेश करूंगा उसकी मिसालों के तौर पर भी, कि उलमा अपने जिस्म के कपड़े और अपने सामान बेच कर किताबें जो है हासिल करते थे, अपनी लाइब्रेरियां कायम करते थे, नजरें माना करते थे कि अगर ये किताब मुझे हासिल हो गई तो मैं इतनी रकात नमाज पढ़ूंगा। उस जमाने में गुर्बत का माहौल भी था और बाज़ औक़ात इजारे के ऊपर नमाज और रोज़ा लिए जाते थे। एक एक किताब को इजारे पर, एक एक साल की नमाज और रोजे के इजारे पर हासिल करते थे। एक साल की नमाज मरहूम की पढ़ूंगा सिर्फ एक किताब के लिए। बाकायदा उलमा से पूछा भी जाता था कि इतनी सारी आपने किताबें कैसे जमा की, कहा अपने गोश्त और खून को निचोड़कर। यानी ये जो सब चीजें हैं ये बहुत अहम है, इसके बगैर, इन असबाब और इन जराए के बगैर इल्म हासिल नहीं हो सकता, इनका एहतराम करना पड़ेगा। और आम तौर पे देखने में आता है कि इल्म की जो आजकल बेवकती हो गई, एक तो ये किताबें फेंक के जाना, एक तो ये भी, और जो किताबें पढ़ भी रहे हैं वो भी उसका एहतराम नहीं करते। कप है वो किताब के ऊपर रखा हुआ है, मसलन चाय का पी के, कोई और चीज़ है, कोई चीज़ खा रहे हैं वो मसलन वो रखी हुई है किताब के ऊपर, कोई किताब पढ़ रहे हैं उसी पे टेक लगा के उससे बैठ गए, मुंह उसके ऊपर रख दिया, कोई भी इस तरह की चीज़, ये इल्म के ज़राए की बेहतरामी। ठीक है, ये हराम नहीं है, ये मकरूह भी नहीं है, किसी मुज्तहिद से आप लिख के पूछेंगे वो कहेगा ना हराम है ना मकरूह है, लेकिन ये एक एहतराम के लिहाज से एक अगर एक आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एहतराम देना शुरू कर दें इन ज़राए इल्म को, तो खुद ब खुद आप देखेंगे कि आपके अंदर एक तब्दीली रूनुमा होने लगेगी खुद बहुत। बाकायदा नेमतुल्ला जज़ायरी ने अनवारे नोमानिया में अल्लामा मजलिसी के मुतालिक ये बात लिखी, ये अल्लामा मजलिसी की कब्र मुबारक, उन्होंने बात लिखी है कि जब अल्लामा मजलिसी किसी किताब को किसी शख्स को पढ़ने के लिए देते थे तो पूछ लेते थे तुम्हारे घर में दस्तरखान मौजूद है या नहीं, अगर वो कहता दस्तरखान नहीं, किताब वापस ले लेते थे कि इसके ऊपर अब तुम यकीन प्लेट रख के खाना खाओगे और या रोटी रख के खाओगे, तो पहले दस्तरखान का इंतजाम करो फिर किताब दूंगा। तो खुद ये जो मिर्जा हुसैन नूरी जिन्होंने अनवार नोमानिया में अल्लामा मजलिसी की बात कोट की, वो खुद इतना ज्यादा इन चीजों के एहतराम के कायल थे कि जब कागज भी काटते थे तो जो कागज की किरचियां जमीन पे गिरती थी उनको भी कहते थे इस तरह से डालो कि लोगों को पांव इस तक ना पहुंचे। ये जरा इल्म है, ये पेपर, ये कागज, इसके ऊपर इस तमाम उलूम लिखे जाते। तो आपने देखा कि इतने इनकी इतनी एहतियात करने के बाद फिर ये इतने बड़े इल्मी मुकाम को इन लोगों ने हासिल किया, और इतना मुतालिया करते थे उलमा, इतना मुतालिया करते थे कि अल्लामा मीर हामिद हुसैन लखनवी जो इंडिया के इतने बड़े आलिम दीन के खुद ईरान और इराक के उलमा तक उनकी इल्मियत के कायल हैं, वक़ातुल अनवार के नाम से जो उन्होंने किताब लिखी है, उनके मुतालिक मिलता है कि इतना मुतालिया करते थे कि बूढ़े जब बहुत ज़्यादा हो गए थे और बैठ कर नहीं पढ़ सकते थे तो लेट कर पढ़ते थे, और लेट कर सीने के ऊपर किताब रख के पढ़ते थे कि जब इंतकाल हुआ है तो सीने की हड्डी के अंदर एक गढ़ा पड़ गया था जब गुसल के लिए उनको लेके गए। बैठे बैठे लिखते थे, बैठ के नहीं लिख सकते तो लेट कर लिखते थे। तो आपने देखा कि बहरहाल आप भी जितना इस मौके को हासिल कर सकेंगे, जितना किताबें पढ़ सकेंगी, क्योंकि वरना ये वक्त ऐसे ही निकलता हुआ चला जाएगा। मुकद्दर का सिकंदर वही बनेगा कि जो बहरहाल हर चीज को अपने सही वक्त और मौके के ऊपर अंजाम दे ले। देखिए शादीशुदा खवातीन जो यहाँ पर आई हैं माशाल्लाह बच्चों वाली, वो बहुत काबिले मुबारकबाद हैं कि कितने झमेलों से अपने आप को बचाकर यहाँ पर लाई हैं, कितनी मुश्किल है। लेकिन सबसे बेहतरीन टाइमिंग्स उन खवातीन के पास हैं जिनके भी शादियाँ नहीं हुई, ये बेहतरीन वक्त है। जितना भी उनके पास एक साल, दो साल, तीन साल का जितना भी वक्त है, इसके अंदर जितना चाहे हासिल कर लें, ये गोल्डन पीरियड है इल्म हासिल करने के लिए। फिर जब शादी हो जाएगी तो फिर घर में जब मारका बदर हुनैन हुआ करेंगे आपके, तो उसके अंदर फिर आपको बहुत कम मौका मिल सकेगा इल्म हासिल करने का। फिर जो उसमें से भी निकल कर आ जाएगी तो हम उसे बहुत बड़े हीरोइन समझेंगे। तो बहरहाल बहुत मुश्किलात उसके बाद शुरू हो जाती हैं। तो चंद माह ही सिर्फ अभी आप इल्म हासिल करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको अपने अंदर एक नूरानियत सी महसूस होने लगेगी। किताबों के अंदर से ये जो तालीमात मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हैं, ये इसके अंदर एक नूरानियत है, اور آپ یقین جانیے کہ وہ افراد کے جو کہ ابھی سے ہی کسی بلند علم مقام کو حاصل کر لیتے ہیں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ، ان لوگوں کا بڑھاپا بہترین بڑھاپا گزرتا بنسبت ان لوگوں کے جو علم کے طور پر آگے نہیں جاتے، تو یقین کیجئے کہ ان کا بڑھاپا بہت مایوس کن، کوئی ان کو لفٹ دینے کو تیار نہیں ہوتا، خاندان کے اوپر ایک بوجھ سا محسوس بوجھ سا بن جاتے ہیں وہ افراد. تو لیکن جو صاحبان علم ہیں، اب دیکھیں بہت سے علماء، علامہ طالب جوہری صاحب ہیں، مولانا غلام علی وزیری صاحب ہیں، شہنشاہ نقوی صاحب، جتنے بھی تصویر وغیرہ میں نظر آ رہے ہیں، ایک لوگوں کا بہرحال ایک جھمگٹا ان لوگوں کے پاس رہتا ہے اس عمر کے اندر. روزانہ کم سے کم 200-250-300 افراد تو ان سے ملنے کے لیے لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہیں، اور جو دیگر بزرگ ہوتے ہیں وہ عام طور پر بہت تنہائی کا شکار ہوتے ہیں، کوئی ان کے پاس جا نہیں رہا ہے، کوئی ان کو بات نہیں کر رہا ہے ان سے، اور ایک تنہائی کا سا ایک احساس جو ہے وہ اپنے اندر رکھتے ہیں. تو وہ افراد کے جو کہ مطالعے کے بہت زیادہ عادی، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی خود بخود ایک ویلیو ایک گھر کے اندر بڑھتی چلی جاتی، ان کا بڑھاپا بڑا اچھا گزرتا. ورنہ عام طور پر جو 70-80 سال کے افراد ہوتے ہیں وہ کہاں لوگ ان کو اس لحاظ سے لفٹ دیتے ہیں، لیکن علماء کو آپ دیکھیں، ان کے گھر والے، ان کے بچے، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، ان کے بہوئیں داماد، سب ان کے آگے پیچھے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے، آیت اللہ سید محمد رضا گلپائیگانی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. ورنہ عام طور پر اتنا زیادہ جنریشن گیپ کی وجہ سے بعض اوقات لوگ کتراتے ہیں عام طور پر بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہوئے بھی، تو بچوں کا ان کا ساتھ، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں مختلف، تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں. یہ بھی آیت اللہ گلپائیگانی. تو اس لحاظ سے دیکھیں تو ان کا ادب اور احترام مسلسل بڑھتا جاتا ہے. آیت اللہ سید علی خامنہ ای رہبر معظم اپنے والد بزرگوار جواد خامنہ ای کے ساتھ، یعنی ہر موقع پر ان کو اتنے بزرگ ہونے کے بعد بھی عزت و احترام کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ عزت و احترام ان افراد کا بڑھتا چلا جاتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو ان کی ایک ویلیو ہو جاتی ہے بنسبت ان جاہل افراد کے جو دادا دادی نانا نانی وغیرہ بن جاتے ہیں، لیکن ایک عزب معطل کی طرح سے ایک بیکار پڑے رہتے ہیں، جبکہ صاحبان علم بڑھاپے میں جا کر بھی کسی تنہائی کا شکار نہیں ہوتے. تو بہرحال دیکھیے، پہلے زمانے میں تمام چیزیں بہت مشکل ہوا کرتی تھیں، ذرا علم حاصل کرنا بہت مشکل تھا، اور کتابیں نہیں اویلیبل ہوتی تھیں، چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی تھیں. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جناب انٹرنیٹ ہی ہے، صرف ایک جسٹ ایک کلک بس آپ کریں تو آپ کے سامنے کتابیں کھلتی چلی جاتی ہیں، تمام چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، کوئی خریدنے کی بھی اب تو ضرورت نہیں، ساری کی ساری اردو تقریباً کتابیں بھی جو ہے انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہیں، عام طور پر گھروں میں کمپیوٹرز وغیرہ بھی ہوتے ہیں، یعنی بس آپ ایک کلک کریں اور آپ کے سامنے ہر چیز جو ہے وہ کھلتی چلی جائے. اور آج تک مجھے یاد ہے جو بالکل ابتدائی طالب علمی کا دور تھا، تو اس میں بعض اوقات کرفیو وغیرہ کراچی شہر کے اندر لگے ہوتے تھے، تو اسی کرفیو کے دور میں ہم اپنے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ کے دروس وغیرہ کے اندر جاتے تھے. ٹھیک ہے آپ کہیں گے کہ وہ کوئی بلند مقام تو نہیں حاصل کر سکے علم کے اندر، لیکن یہ کہ علماء کم سے کم بیٹھ کے کچھ نہ کچھ ان سے سیکھنے کی ایک سعادت رہی، اور اس کے لیے تکالیف بھی اگر انسان اگر اٹھا لے تو اس کو بات کی ساری زندگی میں یادگار بنی رہتی ہیں. یاد ہے ہم لوگوں کو کہ جب ہم جاتے تھے یہاں پہ نجفی لائبریری سولجر بازار میں، ابھی بھی ماشاءاللہ ہے وہ ہے اور بہترین ورک کر رہی ہے، تو وہاں فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے اس کو کھلنے کا انتظار کرتے تھے، بسوں میں بیٹھ کر جاتے تھے، کرائے پہ وہاں سے کیسٹس لے کر آتے تھے، ان کو اتارتے تھے، کیسٹ واپس کرتے تھے، پھر دوسرے کیسٹس لے کر آتے تھے. آج اتنی سہولیات کہ آپ کے گھر میں تمام چیزیں موجود ہیں اور کوئی پڑھنے کو تیار نہیں، کوئی چیز سننے کو تیار نہیں. یہ پچھلی باتیں جو بتائی جا رہی ہیں آپ کو، یہ کچھ تھوڑی سی ایک لحاظ سے غیرت دلانے کے لیے بتائی جا رہی ہیں کہ علماء کو ملتا ہے، کیوں واقعات بیان ہوتے ہیں کہ مولی کے پتے کھا کھا کے جو ہے وہ گزارا کرتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے، اور جناب بیت الخلاء میں جو چراغ جلتا تھا اس کی روشنی کے اندر جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، اور چاند کی روشنی میں پڑھا کرتے تھے، اور کاغذ کے پیسے نہیں ہوتے تھے تو چکنی ہڈیاں جو ہے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے تھے، اور ٹھیکروں کے اوپر جو ہے لکھ کر کتابیں جو ہیں وہ جو ہے وہ لکھا کرتے تھے. شدید ترین گرمی وغیرہ کا جو نجف کا ماحول تھا اس کے اندر انتہائی شدید، اب بھی نجف اور کربلا کے اندر اب آج کل کے زمانے 60 تک ٹیمپریچر چلا جاتا ہے، یہاں 40 سال میں لوگ 40 ڈگری میں لوگ بلبلانے لگتے ہیں، اور وہاں 60 ڈگری تک کے اندر جو ہے سوچی کہ طالب علم نہ ہوا بہت سی جگہوں کے اوپر، اس زمانے میں خاص طور پر نہ اے سی ہوتے تھے، نہ روم کولر ہوتے تھے، نہ کچھ ہوتے تھے، شدید ترین گرمی میں. ملا کاظم خراسانی جو علم رسول کے بہت بڑے استاد رہے ہیں نجف میں، ان کا درس ہو رہا ہے، لیکن شدید ترین گرمی کے ماحول میں हत्ता के शदीद तरीन गर्मी में कमरों के अंदर बैठकर जो इस तरीके से उलमा किताबें लिखते थे कि उनके औलादों को भी तकलीफ हो जाती थी कि बाबा इतनी शदीद गर्मी है, आप इसके अंदर भी इस कमरे के अंदर बैठे हुए हैं। कहा कि बेटा मत कहो कि मैं इस वक्त शदीद तकलीफ में हूं, बल्कि मैं तो इस वक्त रसूल और आयमा के पाकीज़ा नफूस और उनकी तालीमात के दरमियान में हूं, और मैं इन इनकी अहादीस और इनकी तालीमात के साथ महवे गुफ्तगू, मुझे कोई परेशानी नहीं। इसी तरीके से वो जो उलमा शदीद तरीन, इतनी शदीद गर्मी होती थी बाज़ औक़ात कि जो बड़ा बर्तन होता था उसके अंदर पानी रख के उसके अंदर पानी के अंदर बैठकर किताबें लिखते थे। क्या करें कि कोई और तरीक़ेकार नहीं है, शदीद तरीन गर्मी हो रही है, 60 टेम्परेचर हुआ है बाहर, 60 डिग्री, सोचिए। लेकिन क्या इस तरह से, तो बाज़ औक़ात जिस्म को ये भी किया करते थे कि जो जायज़ हद तक जो तकालीफ हैं वो पहुंचाते थे इल्म के लिए, जायज़ तकालीफ। खुद हमारे मौलाना गुलाम अली वजीरी साहब कहते हैं कि जब हमें नींद आती थी बाकायदा, तो हम अपने पाँव के जो बाल होते हैं उसको खींच के तोड़ तोड़ा करते थे। कितनी आप सोचिए, और उन्होंने नमूने के तौर पर एक दफ़ा मैं करके भी दिखाया था। उन्होंने कहा मौलाना ये तो बहुत मुश्किल होता होगा, कहेंगे ये काम सा मुश्किल है, अभी करके दिखाता। उन्होंने करके दिखाया। तो बहरहाल इसी तरह से शहीद अव्वल कितने बड़े, मोहम्मद इब्ने जमालुद्दीन मक्की, धात का बना हुआ गिलास बाकायदा उन्होंने अपने पास रखा हुआ था। जब रात को नींद आती थी तो उस धात के गिलास को गर्म करते थे और अपने पेशानी के ऊपर लगाते थे, तो सर के आगे के बाल भी उनके सारे उड़ गए थे कि ताकि नींद मेरे गायब हो जाए और मैं जो है वो इल्म को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकूं। बहुत से उलमा ऐसे थे, इतना ज़्यादा इल्म का एहतराम करते, तो कहते थे कि हमने आज तक एक कागज़ भी कभी बगैर वजू के नहीं छुआ है। देखिए हमसे इतना तकाजा नहीं, मैं बहुत आगे की बातें इस वजह से आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ ताकि कुछ तो कोई एहतराम पैदा हो जाए इल्म का, कुछ तो इसकी कोई बर्तरी का एहसास हमारे दिल के अंदर पैदा हो जाए इन लोगों के किस्से सुनकर। तो वो कहते थे कि बहुत से तो इस तरह के थे, बहुत से रिहाई अमराज, गैस वगैरह का मर्ज है, उसका शिकार होते थे। तो एक एक दो दो घंटे के अंदर बाज़ औक़ात वाकयात में मिलता है कि 17-17 मरतबा उठकर वजू करते थे। कहते थे नहीं, इन ज़राए इल्म को बगैर वजू के मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तो खुद ब खुद एक नूरानियत जज्ब होती थी। जब कोई मुश्किल मसला हल कर लेते थे या मसलन किसी किताब को पढ़ लेते थे, बल्कि कोई मुश्किल पेश आती थी, अगर अगर कभी भी कोई मुश्किल पेश आती थी तो सदका देते थे इस नीयत से कि ये मसला मुझे समझ में आ जाए, और उसके बाद फिर समझ में आता था। तो आपसे बहरहाल उतना तो तकाजा नहीं है कि आप ये तमाम चीजें करें, लेकिन जैसे कि कलम है, बहुत सारे उलमा की मिलता है कि कलम तक का बेतहाशा एहतराम करते थे। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, कलम का क्या काम है, लिखने पढ़ने के तो इतना काम में नहीं आता जितना शलवार में मसलन कमरबंद डालने का काम आता है, या कान का मैल साफ करने के लिए लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल ये एक बेहतरामी, ये ज़राए इल्म है, इनके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। तो बहुत से उलमा कराम के मुतालिक ये बात भी मिलती है कि इतना ज़्यादा मुताले के भी आदी थे, और एक चीज और करते थे अपने इल्म को बढ़ाने के लिए, जब भी कोई किताब पढ़कर खत्म कर लेते थे तो क्या करते थे, 2 रकात नमाज पढ़कर उस किताब को लिखने वाले के लिए हदिया करते थे, और उसके वसीले से अपने इल्म में इजाफे की दुआ किया करते थे। एक तरीक़ेकार था, इसने इस किताब को लिखने वाले ने कितना बड़ा एहसान है इसका कि इसने, हमने उसकी किताब पढ़ रहे हैं, मसलन तौज़ीहुल मसाइल आप पढ़ रही हैं, तो आप बाकायदा अपने मर्जे को जो हदिया करें, कम से कम एक सूरह फातिहा पढ़कर कोई और सवाब का काम करके, कि इन्होंने इतना बड़ा कि हमारे लिए कितनी, वरना ये तमाम चीज़ों को हासिल करना कितना मुश्किल हो जाता, हमें खुद सारे मसले निकालने पड़ते, इसने हमें कितनी हमारे लिए सहूलियात मुहैया कर दी। फिर उनको हदिया करने के बाद 2 रकात नमाज या कोई भी नेक अमल, उसके बाद फिर अपने उनके वसीले से अपने इल्म में तरक्की के लिए दुआ करें। तो ये सब एहतमाम इसी वजह से किए जाते थे ताकि एक नूरानियत पैदा हो। अब क्योंकि इनका एहतराम भी ख़त्म हो गए इन चीज़ों के, तो वो इल्म के अंदर वो नूरानियत भी नहीं रही। तालिब इल्म अपने असातिज़ा का इतना एहतराम करते हुए भी नज़र नहीं आते, बल्कि ज़रा उनके खिलाफ मिजाज बात हो जाए या उनका कोई मफाद कोई ऐसा हो जो वो पूरा हासिल ना हो सके अपने उस्ताद से, तो उनके खिलाफ बातें करने लगते हैं। जबकि ये बात बता दी जाए, हमारे साल बताते भी हैं, और उलमा नजफ़ और कौम के उलमा ख़ासतौर पर शागिर्दों को ये बात बताते हैं जिनको हम कोट करते हैं, कि जो शख्स भी अपने उस्ताद फ़िक़ही की तौहीन करता है उसको जवानी में मौत आ जाती है। जवानी में मौत, यानी और जो, यानी कभी भी इंसान को इल्म हासिल करना है तो अपने उस्ताद की कभी भी बेहतरामी ना करे। यही वजह है कि मुहक्किक़ कौमी मासूम कौम के हरम के सामने एक कब्रिस्तान है, वहां पर मुहक्किक कोम्मी की कब्र है, बल्कि एक ज़रिया टाइप की बनी हुई उस कब्रस्तान में। इनकी एक बहुत मशहूर किताब थी कवानीन उल उसूल, बहुत मुश्किल किताब। उनके शागिर्द इतना ज़्यादा काबिल कि उसने मुहक्किक कोम्मी की एक सफ़ा इस किताब का पढ़ना भी इंतहा मुश्किल है, हत्ता कि उलमा तक कहते हैं कि बहुत मुश्किल है इसका एक सफ़ा तक पढ़ना और उसको पढ़कर समझना उसके मतालिब। उनके एक शागिर्द इल्मे मुकाम में इतनी बुलंद हैसियत इख्तियार कर गए, लेकिन उस और उस किताब का जवाब लिखा, लेकिन कुछ इस अंदाज में जवाब लिखा कि बाज़ औक़ात जब इंसान जवाब लिखता है और गलतियां पॉइंट आउट करता है तो बाज़ औक़ात कुछ मजाक उड़ा जाता है। गलती उनसे हो गई, नतीजा ये हुआ कि 28-30 साल की उम्र में ऐसा नाबगे रोजगार शागिर्द, इतना सुपर जीनियस कि उसने मुहक़्क़िक़े कौमी की किताब का एक लिहाज से उनकी गलतियां पॉइंट आउट की उसके अंदर, लेकिन क्या है कि आसार वजी उस पर हुए और जवानी में उनको मौत आ गई। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि उलमा ये फरमाते हैं कि बेहतरामी अगर अपने उस्ताद की हो, बहुत से तो ये भी मिसाल देते हैं कि हत्ता के हौजा इल्मिया से जब इंसान रुखसत हो रहा होता है तो आम तौर पे एक तरीक़ेकार है कि अपने असातिज़ा के पास खुदा हाफिजी के लिए जाता है, भाई मैं पाकिस्तान से आया था, पढ़ लिख के वापस जा रहा हूँ, यहाँ से फारिग़ तहसील हो गया हूँ। बहुत से तालिबे इल्म इतना ज़्यादा नज़रअंदाजी से काम लेते हैं कि अपने उस्ताद से मिले बगैर वापस आ जाते हैं। उलमा फरमाते हैं कि जो इतनी भी, यानी उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की, कोई बद एहतरामी नहीं की, लेकिन सिर्फ अदब और एहतराम में इस लिहाज से कि अपने उस्ताद से मिले बगैर आ जाए आ गए, यानी इतने लिफ्ट भी उन्होंने नहीं कराए, इसके भी इतने आसार होते हैं कि उलमा फरमाते हैं कि हमने ऐसे तालिब इल्मों को बाजारों में कमरबंद बेचते देखा। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो पहले दिन ही बता देनी बहुत ज़रूरी, वरना वो अगर उस्ताद का एहतराम निगाह में ना हो। खुद एक तालिब इल्म था, बहुत जीनियस यहाँ पर था, खुद हमने उससे कहा कि भाई आप जो है इतने समझबूझ और इतना अकलमंद हैं तो आप बेहतर है कि अपने इस काम को दीन के लिए इस्तेमाल करें। उसको बहरहाल कौम भिजवा दिया, कौम वो गया, काफ़ी 4-5 साल वहाँ पर पढ़ता रहा और काफ़ी जीनियस था। उसके बाद अचानक से उससे कॉन्टेक्ट जो है वो ख़त्म हो गया। बाद में जब मालूमात कराई गई तो मालूम ये चला कि वो कौम छोड़कर दुबई चला गया और आजकल वहाँ टैक्सी चला रहा है। तो बहुत सी ऐसी गलतियां तालिब इल्मों से हो जाती हैं कि इतने बड़े इल्मी मकाम को हासिल करते 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 और एकदम से ऐसा यू टर्न लेते हैं और कोई ऐसी गलतियां उनसे और ऐसी बेहतरामियां हो जाती हैं कि वो तौफीकात सलब हो जाती हैं। तो ये बहुत अहम बात है कि आपको अलल खुसूस इन बातों का बहुत ख्याल करना है पहले दिन से ही, क्योंकि देखिए जो कुरान की आयात भी है ना, आपके कौन सी उलूम आपको हासिल करना, उसमें तीन तरह के उलूम को अलल खुसूस हासिल करना है जो सूरह जुमा में बयान किए गए। वल्लज़ी बअथा फ़िल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। इसमें रसूल का मकसद बेसत बयान किया गया है, यतलू अलैहिम आयातिही, एक तो यह है कि वह आयात की तिलावत करता है। उलमा बयान फरमाते हैं कि इससे मुराद मारिफत और तौहीद और अकायद का इल्म है। कौन सा इल्म हासिल करना है, एक तो आपको अकायद अपने मजबूत करना है, वह युज़क्कीहिम और उसका काम तस्किए नफ्स करना है, तस्किए नफ्स यानी इल्म अखलाक, ये आपको हासिल करना है। यहाँ पर आपकी बाकायदा सिलसिले में किताबें होंगी और दुरूस होंगे। वह युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा और इल्म फ़िक्ह और उसके अहकामात वाजिबात व हराम का इल्म, यह आपको हासिल करना है। देखिए अकायद का इल्म हासिल करना यूं भी जरूरी है कि ताकि आपका अकीदा हर शक व शुबे से पाक हो जाए, इस लिहाज से अखलाकियात यूं हासिल करना जरूरी है कि फकत एक अखलाकी बुराई के जरिए भी इंसान जहन्नुम में जा सकता है अगर एक भी पाई जाए, एक फकत एक अखलाकी बुराई। शैतान के अंदर आयात के अंदर तस्करा हुई, अना खैरुम मिन्हु, मैं आदम से बेहतर हूं, ये जो तकब्बुर का मतलब, सिर्फ एक तकब्बुर को कुरान ने खास तौर पर डिस्कस किया, उसकी वजह से रांदा दरगाह इलाही हो गया और जहन्नुमी हो गया शैतान, इतनी इबादत करने के बावजूद भी। तो हम ये नहीं कह सकते कि बहुत सारी हमारे अंदर अच्छी खसूसियात हैं, चंद एक बुराइयां अखलाकी बुराइयां हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता, नहीं, फकत एक अखलाकी बुराई से भी इंसान जहन्नुमी बन सकता। अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, उसने तकब्बुर इख्तियार किया और काफिरों में से हो गया, फकत तकब्बुर एक अखलाकी बुराई से काफिरों में से हो गया और जहन्नुम का हकदार जो है करार पाया। कारून, फकत और फकत एक अखलाकी बुराई बुखल की वजह से जहन्नुमी बन गया। تو علم اخلاقیات کا حاصل کرنا یوں بہت ضروری ہوتا ہے. قابیل نے فقط حسد کیا اور حابیل کو قتل کیا. یہ حضرت حابیل کی قبر شام میں, اور جو ہے قابیل جہنمی ہو گیا. اور اس کے بعد پھر اس نے آخر میں عمر میں بت پرستی بھی شروع کر دی تھی, بلکہ آگ کی پرستش شروع کر دی تھی, آگ کی پرستش. اور اس لحاظ سے کافر ہو کر قابیل جو ہے وہ دنیا سے گیا. فقط ایک اخلاقی برائی حسد, اس کے ذریعے. تو اور فقہ یوں ضروری ہے. دیکھیں تین چیزیں قرآن کی آیت کے اندر ہم نے بیان کی جو آپ کو بھی حاصل کرنا ہے, عقائد کا علم حاصل کرنا, اخلاقیات کا علم حاصل کرنا, اور فقہ کا علم حاصل کرنا. کیونکہ اگر آپ نے فقہ کا علم صحیح حاصل نہیں کیا, جیسے کہ عام طور پہ نظر آتا ہے, مثلا آپ نے جو ہے وہ صحیح پردہ نہیں کیا, نماز اس طرح سے پڑھتی رہیں کہ اس میں ایک بال بھی اگر آپ کا نظر آ رہا ہے تو آپ کی نماز باطل ہو جاتی. ایک بال بھی اگر نظر آ رہا ہو, یعنی آپ نے نہیں حاصل کیا اور نمازیں پڑھتی گئیں, بڑے کمپلیکس اور ایک دقیق مسائل ہو جاتے ہیں. خواتین پریشان ہو جاتی ہیں کہ ساری زندگی کی اپنی نمازوں کو کیسے جو ہے دوبارہ پڑھا جائے. بہت سارے ایسے مسئلے پیش آتے ہیں علم فقہ کو حاصل نہ کرنے کے نتیجے میں. وضو صحیح نہیں کیا مثلا, نیل پالش ہاتھوں میں لگی رہ گئی اور اس کا خیال نہیں کیا, بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں. یا ساری زندگی مثلا جو ہے وہ لوگوں کو چیریٹی اور صدقات وغیرہ دیتے رہے لیکن جو ہے خمس جو ہے وہ نہیں دیا. اب کیا ہوگا کہ ساری زندگی کے صدقات لاکھوں روپے کے دیے ہوئے بھی کام نہیں آئیں گے اگر مثلا 5 روپے بھی انہوں نے خمس کے ادا نہیں کیے. تو بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں کہ علم فقہ حاصل نہیں کیا اور جناب غصبی جگہ کے اوپر ساری زندگی 50 سال نمازیں پڑھتے رہے. لوگ عام طور پر مرنے کے بعد میراث کو تقسیم نہیں کرتے, ورثہ کا حق ہوتا ہے اس کے اندر, اور ورثہ اگر راضی نہیں ہیں, اور بعض اوقات لوگ جو جہاں بیٹھا ہے اسی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے, مثلا باپ کا انتقال ہو گیا میراث میں, اب بہن بھائی ہیں سب میں میراث تقسیم ہونی چاہیے یا ان کو راضی ہونا چاہیے یا کوئی سیٹلمنٹ یا مصالحت ہونی چاہیے, کچھ نہیں کر رہے. جو جہاں بیٹھا ہے جو پاورفل ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے. اسے نہیں پتا کہ میں ساری زندگی جس طرح علم فقہ کیونکہ حاصل نہیں کیا, اسے پتا ہے کہ نہیں پتا اس کو کہ میں یہ جس طرح سے بیٹھا ہوں میری اپنی ساری زندگی کی میری نمازیں باطل ہو رہی ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو پتا بھی نہیں چلتا, اور جب کبھی آخری وقت میں اتنا ٹائم گزر چکا ہوتا ہے کہ اس وقت ہی کی ادا نماز ادا کرنا بہت مشکل ہے, چلے جائے گا 50 سال کی قضا پڑی جائے. تو وہ ہے نا کہ جتنا اس کے برخلاف سمت میں جاتا جائے گا, وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ جس کا یعنی مفہوم یہ ہے کہ مجھے ڈر ہے اے عرابی, اے عرابی تو جو ہے وہ کعبہ نہ جا سکے گا, اے عرابی تو کعبہ نہ جا سکے گا, کیونکہ تو جو راستہ چل رہا ہے وہ کعبے کی طرف نہیں بلکہ ترکستان کی طرف جاتا ہے. یعنی آپ نے اگر علم فقہ حاصل آپ نے نہیں کیا تو آپ کسی اور ہی راہ کے مسافر ہوں گے, چاہے دینی کام کر بھی رہی ہوں گی لیکن کوئی قبول ہونے والا نہیں ہوگا. اس وجہ سے بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ علم فقہ کو بھی صحیح طور پر حاصل کیا جائے. علم فقہ جس کے متعلق امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرماتے تھے کہ بغیر علم فقہ کے عبادت کرنے والا اس گدھے کی مانند ہے جو کھونٹے کے گرد چکر لگاتا رہے گا اور کبھی اپنی منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے گا. جب یہ عالم کی 2 رکعت جاہل کی 70 رکعت سے زیادہ افضلیت رکھتی ہیں کیونکہ وہ علم رکھتا. دیکھیے اس میں اپنے ساتھ وہ ہم آگے جو نشستیں ہماری ہوں گی اس کے اندر بہت سی باتیں آئیں گی بھی کہ علم جو ہے اصل میں خدا کی ایک خصوصیت ہے, پروردگار عالم کی صفت ہے ایک علم. تو جب تک انسان اچھی صفات کا حامل نہیں ہوگا کبھی کسی بلند مقام علمی تک وہ پہنچ نہیں سکتا. بہت زیادہ آپ کو محنت کرنا, بہت زیادہ محنت کرنا ہے. جو یہ بھی وجہ ہے کہ امیر المومنین یہ فرماتے تھے کہ جو علم سیکھنے میں 1 گھنٹے کی ذلت نہیں اٹھاتا ہے اسے پھر ہمیشہ جہالت اور نادانی کی رسوائی کی ذلت اٹھانا پڑتی. تو خود آئمہ کے متعلق اور پیغمبر اسلام کے بعد یہ بات یہ اس متعلق ملتی ہے کہ ان کے پاس ہمارے جو آئمہ ہیں ان کے پاس پچھلے تمام انبیاء کے اور ملائکہ اور سب کے علوم ہیں لیکن ہر شب جمعہ بلکہ ہر روز بلکہ ہر گھڑی اور ہر آن ان کے علم میں ابھی بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ان کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی ان کے علم کا سلسلہ نہیں رکا بلکہ پروردگار نئے نئے علوم کے دروازے ان کے لیے ابھی تک مسلسل کھول رہا ہے. تو ان کے ماننے والے بالکل ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھ کر اور بلند و بانگ باب مدینۃ العلم کا نام سن کر نعرے لگانے والے, اتنی جہالت ان کے اندر, کتب بینی کے ساتھ ایسی دشمنی اور نفرت, یہ بالکل سمجھ سے بالا تر. تو بہرحال یہاں تک علماء نے دیکھیے اپنی انہی سخت محنت مجاہدات کے ذریعے اپنے مقام کو حاصل کیا ہے कि आयतुल्ला बाकर बेबहानी, वहीद बाकर बेबहानी, वो करबला में थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे के करीब। اللهم صل على محمد وعلى محمد، बाकायदा एक फिकही मसला के तौर पर भी उलमा ने अपनी किताबों में लिखा है, जिसमें थोड़ी सी इख्तलाफात भी हैं। वो ये कि जो भी मुकामात मुकद्दसा हैं या मुस्तकिल सकूनत इख्तियार रखना कराहियत रखता है। लोग तो कहेंगे भाई हम तो चाहते हैं कि हम करबला ही में चले जाएं, लेकिन क्या है मकरूह, क्योंकि कुछ अरसे वहां पर रहने से अजमत उस जगह की दिल से निकल जाती, तो बेहतर है इंसान दूर रहे और शौक ज़ियारत उसको रहे, ये ज्यादा बेहतर है। तो उनका इरादा हुआ कि मैं करबला छोड़कर चला जाऊं। तो वो खुद कहते हैं कि मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा और इमाम ने फरमाया कि मैं राजी नहीं हूं कि तुम करबला छोड़कर कहीं और जाओ, तुम्हें यहीं पर ही रहना है। यानी ऐसी कुर्बत अपने इल्म और तकवे की बदौलत एक ऐसी कुर्बत हासिल कर ली थी आयतुल्ला वहीद बाकर बेबहानी ने, जिन्होंने अखबारियत को बाकायदा शिकस्त फाश दी थी। ये खुद एक अलग मौजू है जो इंशाल्लाह कभी और आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और इसी तरीके से जो हमारे और उलमा गुजरे, जैसे कि अल्लामा तनकाबिनी, उन्होंने कससुल उलमा लिखी, जिसका उर्दू तर्जुमा खुद हमारे बच्चों के मदरसे की जो साबिका प्रिंसिपल थी उन्होंने इसका उर्दू तर्जुमा भी किया। तो बहरहाल उसी के अंदर कससुल उलमा के अंदर एक बहरैन के एक मोमिन का ख्वाब जो है वो नकल किया गया। वो फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि एक मिंबर रसूल है जिसके ऊपर पैगंबर इस्लाम तशरीफ़ फरमा है और साथ में ही अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम भी साथ ही में तशरीफ़ फरमा है। अम्बिया की सफ़ों की सफ़े लगी हुई हैं और अम्बिया सारे सफ़ों में दस बस्ता पैगंबर इस्लाम के सामने खड़े हुए हैं। बहुत सारी सफ़े और भी हैं, उलमा की सफ़े भी हैं और अम्बिया की भी हैं। इतने में वो बहरैन का मोमिन कहता है, जिसको फिर साहिब कससुल उलमा ने उसको लिखा भी है, कि मैंने देखा कि अल्लामा मजलिसी वहाँ पर आए तो पैगंबर इस्लाम ने कहा कि मुल्ला बाकर आगे आओ और आगे आकर बैठ जाओ। मुल्ला बाकर मजलिसी कहने लगे कि या रसूलल्लाह मुझे शर्मिंदा ना करें, अंबिया तक खड़े हुए हैं, मैं कैसे बैठ जाऊं। पैगंबर ने फिर दोबारा जोर देके कहा कि नहीं बैठ जाओ। तो मैंने ख्वाब में देखा कि वो अल्लामा मजलिसी पैगंबर इस्लाम के साथ जो है वो आकर बैठ गए। तो अल्लामा मजलिसी इस लिहाज से अब देखें कितना बड़ा मुकाम है। बहुत से उलमा ने और भी देखा कि बहुत सारे वहां पर उलमा की सफ़े हैं जो शिफात कर रही हैं, जो कभी और तफसील से मौका मिलेगा तो बयान करूंगा उनकी इस बात को। तो वहां पर जिस आलिम ने ज्यादा किताबें लिखी हैं उसे उतना ही ज्यादा हक शिफात है, और मैंने देखा कि अल्लामा मजलिसी के पास हक शिफात सबसे ज्यादा है। तो ये किताबें लिखना, किताबें पढ़ना, ये सब बहुत बड़े बड़े मुकामात इंसान को दिलवाता जाता है। और अल्लामा मजलिसी के बिल्कुल बराबर में मुल्ला तकी मजलिसी, जो उनके वालिद ने मजलिसी अव्वल कहा जाता है, उनकी कब्र भी, ये उनकी कब्र की तस्वीर है अल्लामा मजलिसी की, और उनके बराबर में उनके वालिद तकी मजलिसी की। खुद तकी मजलिसी खुद बहुत बड़े आलिम थे, वो खुद फरमाते थे कि परवरदिगार, यानी जो भी उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया था, खुद कहते थे कि परवरदिगार आलम ने मुझे तौफीक ज़ियारत हैदर कर्रार से नवाजा है। यानी बराहरास उन्होंने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की है, और वो कहते थे कि मुझे ऐसे मुकाशिफात हुए हैं कि कमज़ोर अकलों वाले उसके मुतहम्मिल ही नहीं हो सकते। और ख़ुद फरमाते हैं कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने भी मुझे अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ किया है, और जब मेरी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो मैंने उस वक्त ज़ियारत जामिया पढ़ना शुरू कर दी। तो इमाम ज़माना ने सुनकर कहा क्या खूब ज़ियारत है, और उसके बाद कहा कि आगे आओ। तकिया मजलिसी कहते हैं कि मैंने कहा कि मौला बेअदबी हो जाएगी, मैं कैसे आगे आऊँ। इमाम ने फरमाया परवाह ना करो, आगे आ जाओ, तुमने बड़ी जहमतें उठाई, और उनकी उस तमाम काविशों की बहुत ज़्यादा पज़ीराई की इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं इल्म से हासिल होंगी, ये तकवे से हासिल होंगी, ये रियाजतों से हासिल होंगी, ये तकालीफ उठा के हासिल होंगी, या रातों की नींदें बर्बाद करने से एक लिहाज से, जिसे दुनियावी एतबार से कहा जाए उससे हासिल होंगी। जहमतें उठा, अभी गर्मियां शुरू हो जाएंगी, यहाँ पर लोड शेडिंग होगी, गर्मियां आ जाएंगी बहुत शदीद, उसके अंदर आपको आना पड़ेगा, ये मुकामात इन तरीकों से हासिल होते हैं। ये फजूल टीवी पर अपने टाइम जाया करने या मॉर्निंग शोज वगैरह को देखकर इन मुकामात को हासिल नहीं किया जा सकता। और कितनी ही औरतें हैं देखिए ऐसी गुजरी, बानो अमीन इस्फहानी, ये औरतों में मुज्तहिदा ईरान के अंदर गुजरी, इस्फहान में इनकी कब्र भी है। और हम आम तौर पर दिमाग में ये आता है कि भाई ठीक है, इतना बड़ा मुकाम इसी वजह से हासिल कर लिया, कोई शादी वगैरह भी नहीं हुई होगी। ना सिर्फ शादी हुई बल्कि 10 बच्चे भी थे इनके, और उसके साथ इतने बड़े इल्मी मुकाम को इन्होंने हासिल किया। हद तक कि इनके वाकयात के अंदर मिलता है कि इनके अपने एक बच्चे का इंतकाल हो गया, तो जो उस्ताद इनको पढ़ाने के लिए आते थे, उन्होंने सोचा कि अब तो काफी अरसे तक छुट्टी हो जाएगी, लेकिन दूसरे या तीसरे रोज ही इनका बुलावा आ गया कि तालीम का सिलसिला फिर दोबारा शुरू कर दें। नेक्स्ट डे से अपने बच्चे के इंतकाल के अगले दिन से ही जो है इन्होंने तालीम का सिलसिला दोबारा शुरू किया। जाहिर है फिर इल्म में बड़े मुकाम को तो हासिल करना ही है। तो देखिए बार 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 आपको यही बात कही जा रही है कि आपको कुतुबबीनी ज्यादा से ज्यादा करनी है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को दोहराना है, दूसरों को बयान करना है, जो चीज यहां सुनकर जाएं अपने घर में अपने घर वालों को बताएं, अपने शौहर को बताएं, अपने बच्चों को बताएं, भाइयों को बताएं, वालिद को बताएं, अपनी बहनों को बताएं, यानी ये इस चीजें मल्टीप्लाई होंगी, ये जरब हो जाएंगी, आपको हमेशा के लिए चीजें याद हो जाएंगी। बहस और तकरार जब भी हौजा है इल्मिया में, तालिबे इल्मों को बार बार जो है मुबाहिसा होता है, उनका चीजों को रिपीट करते हैं, वो तकरार उसकी होती है। यही वजह है कि आप खुद देखती हैं कि कुरान की बार बार तिलावत, बार बार तिलावत, इतनी दफा तिलावत होनी चाहिए कि एक दफा अल्लामा तालिब जौहरी साहब क़िबला जब कुछ अरसे पिछले साल हमारे इस मदरसे में तशरीफ लाए थे, तो खुद उन्होंने बात कही थी कि कुरान का इतना मुताला करना चाहिए, इतना करना चाहिए कि ये बोसीदा हो जाए, फट जाए, इसकी जिल्द करवानी पड़े या बाजार से दूसरा खरीदना पड़े। यानी खुदा ना खास्ता ये नहीं कहा जा रहा कि इसकी कोई बेहतरामी हो, मकसद कहने का कोई भी किताब आप देखती हैं, तालिब इल्म जब साल में एक किताब को पढ़ता है तो साल के अख्तिताम पर किताब का कैसा हशर हो जाता है, बार बार सफ़े खोलता है, पेज निकलने लगते हैं कुछ। यहाँ पर दादा हुजूर का जो जो भी वो होता है कुरान, उसको भी हम देखते हैं बिल्कुल नया का नया, इस वजह से कभी पढ़ने की नौबत ही नहीं आती, उससे इस्तफादे की कोई नौबत नहीं आती। तो कुरान की बार बार तिलावत, बार बार तिलावत, और यही वजह है कि खुद ईरान के अंदर इसके बाकायदा तकारीब मुनक़िद की जाती हैं, ख़वातीन मखसूस महफिलों में आकर तिलावत कुरान करती हैं। और अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ था कि ईरान में उन लोगों ने अभी भी कम से कम 20 लाख के करीब तो हाफिज़ान कुरान में ईरान में इस वक्त भी मौजूद है, और एक साल के अंदर अंदर उन लोगों का प्रोग्राम है कि ईरान में हाफिज़ कुरान जो अफराद की तादाद जो 1 करोड़ के करीब करने का प्रोग्राम है, 1 करोड़। कहा जाता है कि ईरान में इस वक्त कारियाने कुरान कम है, हाफिज जो है वो ज्यादा है। हाफिज कुरान ईरान में तकरीबन 1 करोड़ के करीब तादाद हो जाएगी। तो आप देखेंगे बहरहाल ये बार बार इसको तिलावत का भी हुक्म इसी वजह से, ताकि रगो पे के अंदर कुरान जो है वो दाखिल हो जाए, इतनी ज्यादा उसकी तिलावत हुई। आ रहा है इस स्क्रीन पे कुछ? अच्छा। इसी तरह से क्योंकि आप देखती हैं कि बहरहाल रिवायात के अंदर भी ये चीज़ आई है कि इसको इसकी ताकीद इस वजह से आई है कि उलूम को हासिल करने की और उसको हिफ्ज करने की और उसको तकरार करने की, कि अगर किसी शख्स ने भी तकरार नहीं की तो इल्म के मुताबिक बात कही जाती है कि एक वहशी जानवर की तरह से होता, यानी वो जो बहुत जल्द फरार अख्तियार कर लेता है, फरार हो जाता है। जब भी बहुत सी रिवायात में इल्म को इस बात से तशबीह दी गई कि इस तरीके से कोई ऊंट का रखवाला ऊंट की देखभाल करता है ना, तो जब तक देखभाल होती रहती है और उसकी रस्सी बांधी जाती है जब तक ऊंट काबू में रहता है, और एक दफा भी रस्सी खोल दी जाए उसकी देखभाल से इंसान पहलू तही करने लगे तो ऊंट इधर उधर हो जाता है। तो इल्म के मुताबिक भी इसी तरह से, कितना ही देखिए आप कीमती पौधा लेकर आए और उसकी पानी का सही इंतजाम ना करें, उसके लिए हवा का सही इंतजाम ना करें, ज्यादा पानी दे दें, कम पानी दे दें, उसकी कांटे नहीं, उसकी बहुत सारी कोपलों को बाज़ोकात तो वो पौधा मर जाता है, मुरझा जाता है। तो इल्म को जो लाहक होने वाली आफतें, जिन पे हम अक्सर व बेशतर अभी आइंदा की जो नशिस्तों में भी इस बात की तरफ बहुत सी तवज्जोहात को मबजूल करवाएंगे कि उलमा ने, बहुत से उलमा ने तो जो सबसे पहले इल्म को लाहक होने वाली जो आफत लिखी है ना, अभी और आफतें तो आगे चलकर आती रहेंगी, वो एक है तातीलात, छुट्टियां। ये तो अखबार की कटिंग हम आपको इसके तौर पे अक्सर वो आप देखा, वही ये इस बात की छुट्टी, उस बात की छुट्टी, इस बात की छुट्टी, उस बात की छुट्टी, हर वक्त बस छुट्टियों और तातीलात के अंदर जो है जिंदगी बसर हो रही। उलमा खास तौर पर ये बात कहते हैं कि सबसे ज्यादा तातीलात से, ये इसको आप नोट नहीं करके रख लीजिएगा कोई तारीख वगैरह, ये तो ऐसी अखबार की कटिंग के एतबार से आपको मुतवज्जे कराने के लिए कि छुट्टियों से सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो लोगों को होता है। ये वजह है कि हमारे उलमा में से आयतुल्ला मोहसिन अमीन आमिली, जिनकी बहुत मशहूर किताब है एयानुश शिया है, उन्होंने हौजे में भी और वैसे भी दीन तालिब इल्मों के एतबार से छुट्टियां करने पर सख्त अफसोस का इजहार किया। सख्त अफसोस का कहा सबसे ज्यादा तालिब इल्म को जो चीज नुकसान पहुंचाती है ना वो छुट्टी करना है। और हमारे उलमा और मराजे में से खास तौर पर शेख जव्वाद तबरेजी, ये तो फरमाते थे कि 30 साल हो गए हैं मैं छुट्टी के मफहूम से ही नाशना हूं। ज्यादा अरसा नहीं हुआ शेख जव्वाद तबरेजी के इंतकाल, चंद साल हुए। फरमाते हैं कि 30 साल से या शायद किसी जगह 40 साल का मैंने पढ़ा था, मैं छुट्टी के मफहूम से ही नाआशना हूं, मुझे मालूम ही नहीं कि छुट्टी क्या होती। एक तालिब इल्म के लिए, एक मुबल्लिग के लिए छुट्टी का क्या है? आज मैं तबलीग कुछ नहीं करूंगा, आज बस मैं घर पर बड़ा सोता रहूंगा। तालिब इल्म आज मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, आज मैं सिर्फ टीवी देखता रहूंगा। ये कौन सा तालिब इल्म है? इसको रोजाना हर वक्त हर आन कोई मौका ऐसा हाथ से नहीं जाने देना चाहिए जिसमें इल्म हासिल ना करे, छुट्टी का कोई तसव्वुर नहीं। अच्छा, अगर आप उस लिहाज से देखें तो उलमा कहते हैं कि तीन तरह की आमतौर पर तातीलात होती हैं। एक तो वही रस्मी तातीलात होती हैं जिन्हें गजेटेड हॉलीडेज वगैरह कहा जाता है, कि जनाब 14 अगस्त की छुट्टी आ गई और जनाब 23 मार्च की छुट्टी आ गई, इस तरह की होती हैं। कुछ गैर रस्मी टाइप की तातीलात होती हैं, अय्याम विलादत आ गए, 13 रजब आ गई फला, वहाँ पर हौजे और जो दीनी मदारिस हैं उनमें आमतौर पर इस तरह की छुट्टियाँ बहुत होती हैं। शहादतों के अय्याम में छुट्टी है, विलादत के अय्याम में छुट्टी है, ये छुट्टी है, वो छुट्टी है, वहाँ पर भी छुट्टियों का बड़ा सिलसिला है। तो अच्छा, बाज़ औक़ात इस तरह की भी गैर रस्मी छुट्टियाँ हैं कि जनाब हालात ख़राब हो गए, जो यहाँ सबसे ज़्यादा पेश आती हैं छुट्टियाँ, और उसके अंदर छुट्टी करनी यूँ भी ज़रूरी हो जाती कि जान का रिस्क नहीं लिया जा सकता। बारिश हो गई, शदीद गर्मी हो गई, कभी जो है जनाब जो उस्ताद है वो छुट्टी कर गया, कभी तालिब इल्म खुद छुट्टी कर ली, ये गैर रस्मी छुट्टियां भी हैं। तो रस्मी छुट्टियां अलग हैं, फिर गैर रस्मी छुट्टियां अलग हैं। कुछ उलमा फरमाते हैं कि जो कुछ छुट्टियां ऐसी होती हैं जो तातीलाते गैर महसूस होती हैं, गैर महसूस तातीलात, मसलन क्लास में देर से आना, आपने आधा लेक्चर मिस कर दिया, शुरू का अहम तरीन पार्ट मिस कर दिया, क्लास से छुट्टी हो गई आज भी, ये गैर महसूस छुट्टी। जिस दिन मुबाहिसा करना है मुबाहिसे के दिन गायब हो गए, गैर महसूस छुट्टी। या क्लास में मौजूद है लेकिन दर्स तवज्जो से नहीं सुन रहे, ये गैर महसूस जो है वो तातील हो गई। तो अब देखिए कि बाज़ औक़ात अगर बिलफर्ज कभी छुट्टी लाजमी भी हो जाए, ये आपको उसके लिहाज से गाइड करने के एतबार से बात है, कभी हो जाए, हालात ख़राब हो जाते हैं, तब भी आप किताबें उस दिन ज़रूर पढ़ें, उस दिन कोई भी कैसेट ज़रूर जो है वो लें, इंटरनेट पर जाकर मदरसे के जो दरूस हैं वो आप सुनें। यही वजह है कि जो शेख बहाई थे इमाम रिजा अलैहिस्सलाम के रोजे में, अल्लाहु सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, शेख बहाई के शागिर्द कहते हैं, खुद शेख बहाई की कब्र है, उनके शागिर्द कहते थे कि हम तातीलात में बाज दफा अय्याम दर्स से ज्यादा इस्तेफादा कर लेते हैं, अगर छुट्टियां भी हो जाए ना तो अय्याम दर्स से ज्यादा इस्तेफादा हो जाता है। और आप देखेंगे उसमें वो कहते थे हम दीगर उलमा के दर्स में जा सकते हैं, वरना जो दर्स हो रहे होते हैं उसमें अपने उस्ताद के पास ही इतना टाइम लग जाता है, नहीं इसमें छुट्टियों में हम दीगर उलमा के दरस में भी जाते हैं, गैर दर्सी किताबें हम पढ़ लेते हैं छुट्टियों में, अदबियात की किताबें पढ़ लेते हैं वरना कोर्स की किताबों से फुर्सत नहीं मिलती, शेर व सुखन की किताबें पढ़ लेते हैं, मुज़ाकरात दीनिया जो हैं उसके अंदर हम लोग चले जाते हैं। तो छुट्टी के मायने अगर ये समझे जाए कि बेकार फजूल वक्त ज़ाया किया जाए, बस रिश्तेदारों के घर में गैर ज़रूरी आमदोरफ़्त, घंटों वहाँ पे बैठे रहना, कई कई दिन उनके घरों के अंदर रुके रहना, ये तालिब इल्म को किसी भी तौर पर ये सज़ावार नहीं कि इस तरह के अपने वक्त को ज़ाया करे, बिल्कुल उसको अपने वक्त को बचाना चाहिए, यानी बल्कि उसको कोशिश करनी चाहिए कि जो काम वो पूरे साल में नहीं कर सका है, जो उसकी कमजोरियां रह गई वो तातीलात के दिनों में जो है उन कमियों को पूरा कर ले। यही वजह है कि पैगंबर इस्लाम के जो मुखलिस असहाब थे वो वक्त को, ये जो टाइम है इसको सोने और चांदी से ज्यादा कीमती समझते थे, सोने और चांदी से ज्यादा कीमती, बल्कि उसको बर्फ की तरह समझते थे। जिस तरह बर्फ होती है ना आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही होती है, पिघल रही होती है, बर्फ बेचने वाला परेशान होता है कोई जल्द से जल्द इसको खरीद ले वरना ये पूरी पिघल जाएगी। तो फुर्सत के लम्हात भी देखिए बहुत तेजी के साथ गुजर जाते हैं, बाज़ औक़ात आप देखती हैं बीमारी आ जाती, खुद आप बीमार हो गई, घर में कोई बीमारी आ गई, कोई परेशानी आ गई, तो जो छुट्टियां आमतौर पर होती हैं ना, आमतौर पर जो आपके अपनी तरफ से जो आप छुट्टियां कर लेती हैं, दिल नहीं चाह रहा, आज गर्मी ज़्यादा लग रही है, आज मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, ज़रा सो लूँ, आज मैं स्कूल या कॉलेज से देर से आई, अब बहुत थकन बहुत हो गई है, तो ये गैर हाजिरी जो है इल्म की बरकतों को ख़त्म करके रख देती है। ये बात याद रख लीजिए, छुट्टियां जो हैं इल्म की बरकत को ख़त्म कर देंगी। तो उलमा फरमाते हैं कि जो हकीकतन इल्म हासिल करना चाहे ना, उसको इस तरह से इल्म हासिल करना चाहिए जैसे कोई माँ अपने गुमशुदा बच्चे को तलाश करती। माँ, किसी माँ का बच्चा खो जाता है तो वो बैठ के जो है वो मॉर्निंग शोज नहीं देखती, वो बैठ के मसलन जो है कोई ड्रामे वगैरह नहीं देखती, उसका महवर और मरकज फकत ये होता है किसी तरह से मुझे मेरा बच्चा मिल जाए, उसके अलावा उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। तो बेहतरीन तालिब इल्म वही है जो हर वक्त अपने इल्म हासिल करने की फिक्र में रहे, जैसे माँ अपने गुमशुदा बच्चे को तलाश करती। कुछ उलमा तो ऐसे गुजरे हैं जो बाकायदा आप हैरान होंगी और कहेंगी, जो बज़ाहिर खुदा ना खास्ता उनके लिए खपती का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दें, जो हौजा इल्मी हा इल्मी उस ज़माने में ना फ़ोन होते थे, ना कोई टेलीग्राफ होता था, ना कुछ होता था, वो दूसरे मुल्कों से आए हुए होते थे, तो खतूत कई कई महीनों में उनके पास पहुंचते थे, तो अपने खतूत को खोल कर नहीं पढ़ते थे, क्योंकि कोई भी ऐसी खबर उसके अंदर हो गई, ऐसा ना हो कि हमें वहाँ वापस वतन जाना पड़ जाए और इतने अजीम मकसद के लिए जो है उसमें कोई रुकावट आ जाए। बहुत सी चीज़ आप कहेंगी कि तो भाई बड़ी वैसी बात हो सकता है, चले मैं मैक्सिमम कहूँ कि किसी रिश्ते करीबी रिश्तेदार के मरने की खबर, मरने की खबर भी होती तो कहते ज़्यादा से ज़्यादा इंतकाल हो गया होगा ना, परवरदिगार के जवार में पहुंच गया। लेकिन मैं अगर इस सफ़र को महीनों इख्तियार करके फिर वतन वापस गया, पता नहीं वापस आना नसीब भी हो या ना हो, और मैं इतने बड़े दीनी काम से रह जाऊं जो मेरे जिम्मे अल्लाह ने जिम्मेदारी डाली, वो खत खोल के नहीं पढ़ते थे, और यहाँ आज ही आपके हाथ में आप एक सेकंड जाया किए बगैर SMS अपना जरूर पढ़ लेती हैं, चाहे क्लास ही क्यों ना हो रही। तो बहरहाल उलमा एक बात और भी बयान फरमाते हैं उस्ताद के एतबार से, वो फरमाते हैं कि उस्ताद का जो एहतराम है ये खुद तकवे में शामिल है, तकवे की जो रिक्वायरमेंट है ना, अगर कोई शख्स उस्ताद के एहतराम में कमी कर रहा है, इसका मायने ये है कि वो मुत्तकी नहीं है, और जितना उस्ताद के एहतराम को इजाफा करेगा उतना ही उसके तकवे के अंदर भी इजाफा होता चला जाएगा, और तकवे में जैसे जैसे इजाफा होगा, कुरान की आयत है वत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह, तुम तकवा इख्तियार करो खुदा तुमको इल्म देगा, यानी आपको तकवा इख्तियार करना आपका काम है, इल्म देना परवरदिगार आलम का काम है। तो इतना ज़्यादा इल्म और अपने उस्ताद का एहतराम, ये आपके इल्म में बरकत का बाइस होगा, आपके इल्म में इजाफे का बाइस होगा, और पुराने उलमा तो अपने उस्ताद से हिकायतों में मिलता है ऐसे डरते थे जैसे किसी बादशाह से डरा जाता है, अब तो खैर वो ऐसी चीज़ें कहीं नज़र नहीं आती, और तालिब इल्म के लिए अपने उस्ताद के सामने खुशामद करना और तजल्लुल का इजहार करना, यानी एक लिहाज से झुक कर उस्ताद से मिलना, उलमा इसके मुतालिक एक बात कहते हैं कि अभी कुछ दिनों बाद आपको बाकायदा हो सकता है इस मौजू पे क्लास भी हो, जो कि उलमा का कौल है कि कुव्वत हाफिजा बढ़ाने का एक बड़ा सबब उस्ताद के हक में दुआ करना है, जिससे कुव्वत हाफिजा में इजाफा होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं तकरीबन 100 के करीब के जो कि कुव्वत हाफिजा में इजाफे का सबब बनती हैं, उसमें से एक अपने उस्ताद के लिए दुआ करना आपके कुव्वत हाफिजा में खुद ब खुद इजाफा होगा। तो उलमा देखिए फरमाते हैं कि इल्म उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकता जब तक कि तीन चीज़ों का आप अदब और एहतराम करना सीख लें, आपको इल्म खुद ब खुद हासिल हो जाएगा। पहली तो चीज़ है अपनी दरसगाह, जिस जगह जिस मदरसे में आप पढ़ें उसका एहतराम, ऐसा ना हो कि यहाँ से आप उठकर जाएं तो नीचे यहाँ पे शाही सुपारियों के रैपर, टॉफियों के रैपर, चिप्स के रैपर और ये सब चीज़ें पड़ी हों, फटे पुराने पेपर्स, तो वो ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये दरसगाह के उसके मुनाफी हैं। यहाँ पे गंदगी फैलाना, कोई बहुत सी चीज़ें आप देख रही हैं कि नहीं इसका जो फलाना चीज़ का कोना मुड़ा हुआ है, कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रहा है, खुद उठा के उसको डस्टबिन में डाल दें, कुछ कर दें, ये उसके एहतराम के मुनाफी, यानी आप जिस जगह पाई खुद से आगे बढ़कर आपको देखना चाहिए, ताकि दरसगाह का जितना एहतराम आपके निगाह में होगा उतना ही इल्म ज़्यादा से ज़्यादा आपको हासिल होगा। इसी तरीके से दूसरी चीज़ है उलमा अपने उस्ताद का एहतराम, जितना उस्ताद का एहतराम होगा, तवज्जो के साथ सुने, इधर उधर ना देखें, आपस में बातें ना करें, कोहनी एक दूसरे को ना मारें, लिख कर एक दूसरे से बात ना करें, मैसेजेस एक दौरान दर्स एक दूसरे को ना करें, ये तमाम चीज़ें उस्ताद के एहतराम के मनाफी। जितना उस्ताद का एहतराम यानी तवज्जो से बात आप उनको सुनेंगी उतनी ही ज़्यादा आपको इल्म जो है वो हासिल होगा। तीसरी चीज़ है किताब का एहतराम, किताब का एहतराम जितना ज़्यादा होगा। तो उलमा बहुत से तो ऐसे भी हैं जो किताबों का जो बैग होता है वो कभी भी, यहाँ तो खैर चलें फिर भी ऐसा है कि यहाँ तो आप ज़मीन उसके ऊपर रख सकती हैं कारपेट वगैरह पे, कभी भी अपने बैग को इसमें किताबें होती थी ज़मीन पे नहीं रखते थे। नहीं अच्छा नहीं लग रहा है इसके अंदर, जिस एतबार से इसके अंदर अहादीस भी लिखी हुई हैं, इसके अंदर कुरानी आयतें भी लिखी हुई हैं, उसके एहतराम के मुनाफी। तो इल्म के ज़राए का भी जितना, ये तीन चीज़ों का एहतराम अगर आप करना सीख जाएं, दरसगाह का एहतराम, उस्ताद का एहतराम और किताब का एहतराम, फिर आप देखिएगा कि किस तरीके से आपको इल्म हासिल होता है। बाजारों के उलमा फरमाते हैं चक्कर काटना ये आपकी बरकत इल्म को ख़त्म करता है। गैर ज़रूरी तौर पर बाजारों में घूमते फिरना, बस निकले हुए हैं बाजारों में वहीं पर ज़्यादा दिल आपका लग रहा है। कुछ लोग तो ऐसे गुजरे हैं कि जिनको इतना ज़्यादा किताबों से शगफ था कि अपने मरने के बाद लोगों के ख्वाब में आए, कहा कि हमें रहने की ऐसी जगह दी गई है कि जिसकी दरो दीवार भी किताबों की बनी हुई। मैं तो सिर्फ आपको एक लिहाज से सिर्फ दिखाने के लिए, एक विजुअलाइज करवाने के लिए, वरना आलम आखरत और जन्नत की चीज़ें कहाँ, किसके दरो दीवार किताबों के बने हुए हैं। हमें ऐसी जगह पर जाकर ठहराया गया और यहाँ पर क्या है, आप देखेंगे जितने ज़्यादा दूर किया जा सकता है सबसे ज़्यादा लतीफ़े उस्ताद और शागिर्द के बनाए गए, मजाक बना दिया जाए उस्ताद शागिर्द से। अच्छा फिर वो शागिर्द साहब कुछ बात कहते हैं, कुछ बात उस्ताद कहते हैं, तालिब इल्मों के आपस में लतीफ़े। एक तालिब इल्म मसलन दूसरे से कह रहा है कि चलो यार आज कोई ऐसा काम करते हैं जो उससे पहले कभी ना किया हो, तो कहता चलो फिर आज पढ़ ही लेते हैं मेरे ख्याल। तो अब इस कस्म की चीज़ें जो है लोगों को हंसी मजाक में करके लोगों को उससे दूर कर दिया जाए। तो हमारे उलमा ऐसे गुजरे, एक आगा मीर जहानी गुजरे हैं जो जब भी कभी दर्स देने जाते थे और जब कभी मजलिस पढ़ते थे, बिहारुल अनवार की 110 जिल्दें पढ़ने के बाद दर्स देने के लिए जाते थे, 110 जिल्दें बिहारुल अनवार की जब तक नहीं पढ़ लेते थे। आयतुल्लाह बुरजर्दी फरमाते हैं कि मैं रात को मुताला अपना शुरू करता था और जब सर उठाता था तो देखता था सुपैदा सहर नमोदार हो गया, सुबह हो गई, फजर का वक्त हो गया, रात गुजरने का एहसास ही नहीं हो रहा, रात कहाँ चली गई। तो देखा आपने कैसा इल्म हासिल किया। और आज हम देखते हैं कि हाफिज़ा जो है वो नाम को नहीं, इस वजह से कि मुताला भी नहीं तो हाफिज़ा भी नहीं, उलमा के नाम नहीं याद होते, किताबों के नाम नहीं याद होते, तो जब किताबों के नाम नहीं याद होगा तो उसमें उसका मतन कहाँ से याद होगा, अहकामात शरीयत कैसे याद होंगे, इख्तलाफ़ मराजे मुज्तहिदीन का इख्तलाफ कैसे याद होगा, अल्फाज़ अहादीस कैसे आपको याद होंगे। तो बहरहाल देखिए हर चीज़ में आप कोशिश करें कि परवरदिगार आला एक लिल्लाही एक नियत को लेकर आए, अल्लाह के लिए, किताब भी खोलें अल्लाह के लिए, इल्म हासिल करने आ रही हैं अल्लाह के लिए, बस के अंदर आप बैठ रही हैं, वैन में बैठ रही हैं, नियत करें, बाकायदा नियत को करना सीखें, नियत को इस्तेहजार करें, इस्तेहजार नियत दिमाग में नियत को लेकर आए कि मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं क्यों जा रही हूँ मदरसे, कुर्बतन इलल्लाह, मदरसे आ रही हूँ, दरवाजे के अंदर पाँव रखते वक्त भी कुर्बतन इलल्लाह की एक नियत हो, इम्तिहान दे रही हैं, किताब खोल रही हैं, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, हर चीज़ में उसको अल्लाह की तरफ उस नियत को मोड़ कर लेके जाएं। जिस तरह आप नमाज की नियतें करती हैं इस तरह से इन इल्म दीन के लिए भी बाकायदा नियतें करना सीखें। और एक और बात इसके अंदर ख़ास तौर पे बात, बस टाइम हो गया, आखिरी एक बात कह के जो है इसको ख़त्म करूँगा, सुस्ती और काहली लगने वाली बीमारी। तालिब इल्म हमेशा एक से दूसरे को सुस्ती काहली लगा, मसलन आप जमाही लेते किसी को देखती हैं आपको क्यों जमाही आने लगती, इसी वजह से कि आपको ये लगने वाली बीमारी। इसी के मुकाबले अगर कोई चाको चौबंद है तो दूसरों की भी सुस्ती दूर हो जाती। आप चंद सहेलियों को बताएं कल तो मैंने पूरी रात फजर तक पढ़ती रही, अब खुद बहुत सहेलियाँ पहले तो आपकी डिप्रेशन में जाएंगी, अरे हम नहीं पढ़ रहे, फिर उसके बाद उनमें भी किसी में शौक हो सकता है पैदा हो जाए, वो भी मेहनत करने लगे। सलाहुज़्ज़वाहिर उनवानो सेहत इज़्ज़मायर, जाहिर की दुरुस्तगी बातिन की सेहत का पता देती। जितना आपके नज़र आने चाहिए आपकी एक्टिविटी ज़ाहिरी उसके ऊपर आप कितनी तवज्जो देती हैं, अपनी आराइश पर, अपने मेकअप पर। देखिए हो सकता है, उलमा कहते हैं कि हो सकता है कोई शख्स खुश शक्ल हो मगर नूरानी ना हो। बिलाल आज आ जाएं, फिज़ा आज आ जाएं, जॉन आ जाएं, हाजरा आज आ जाएं, ये सारे हबशी थे, खुश शक्ल नहीं थे, लेकिन ये आ जाए तो नूरानियत से भरपूर जरूर है चाहे खुश शक्ल नहीं। जब भी बिलाल की जो सीन है वो भी खुदा के नजदीक शीन लिखी जाती है इसी वजह से। तो इसी मेहनत से, इसी इखलास के जरिए उलमा साहिब करामत बन गए हैं। यही अहादीस जो आप कितनी ज्यादा अपने नोट्स बनाएंगे, आपके खुद उंगलियों के अंदर एक तासीर पैदा हो जाएगी। शेख अब्बास कुमी, जिनकी मफातीहुल जिनान है, पानी के अंदर अपनी उंगलियों को घोल के आंखें दुखने आती थी तो पानी, अपनी उंगलियां पानी में डुबो कर उसका पानी आंखों में लगाते थे। कहते थे इन उंगलियों के, मैंने अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलाम इस उंगलियों से लिखी, इसके अंदर भी शिफा की एक ऐसी तासीर पैदा हो गई, खाके शिफा तो रही एक तरफ, तो मेरी उंगलियों में भी शिफा की तासीर पैदा हो गई। शहीद सानी के मुतालिक मिलता है कि कलम को स्याही के अंदर डुबोते थे और एक दफा डुबोने के बाद 70 सतरें लिख लिया करते थे, जबकि एक या दो सतर से ज्यादा उस जमाने में कलम को डुबोकर नहीं लिखा जाए, ऐसी करामतें पैदा हो गई थी। तो बहरहाल आप देखिए कि ये इल्म ही है और मेहनत है और इखलास है जो कि किसी भी बुलंद मुकाम तक आपको पहुंचाएगा, उन तमाम जरा इल्म के एहतराम के साथ जिनका अभी मुख्तसरन मैंने तस्करा किया। लेकिन आज से उसका आगाज जरूर कर दीजिए, इंशाल्लाह अगली राहें खुद ब खुद आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। और आखिर में फकत इस इल्म के हुसूल के लिए, अगर इल्म हासिल नहीं किया तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का एक बाकायदा एक आपको जरूर याद रखना है, एक कौल कि हमें शिया कौम के जोहला और बेवकूफों ने और ऐसे लोगों ने जिनके दीन के मुकाबले मच्छर का पर भी भारी है बहुत अजियत और तकलीफ पहुंचाई। अगर कोई शख्स जहालत की जिंदगी गुजार रहा है और इल्म हासिल नहीं कर रहा है तो वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को शदीद तकलीफ पहुंचाने वालों में से। आज से हमें तौबा करनी है कि हम इस जहालत की जिंदगी को तर्क करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करके अपने जमाने के इमाम को खुश करेंगे। आज बहुत इब्तदाई गुफ्तगू थी लेकिन इंशाल्लाह जैसे जैसे अगली क्लासेज आएंगी उसके अंदर गुफ्तगू हमारी आगे बढ़ेगी। अब 5-7 मिनट का आपको एक वक्फा है, इस दौरान पानी वगैरह पी लीजिए ताकि दूसरी क्लास सर वसीम इमाम साहब की वो शुरू हो जाएगी आपके लिए। वो सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन।